मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دو بھائی پراٹھا نہیں کھایا آج اصل میں تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑے گا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل، مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں، میں نے کہا بھائی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں۔ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے، کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے۔ جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ، تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے۔ فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو، واٹس اسٹیٹس، تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا، میں خیریت سے ہوں، رپورٹ خیریت کی ہے۔ تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے، کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں، سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا۔ خیر دیکھو، یہ تو ایک فیک نیوز تھی، جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے خیر، لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی، ہم سب کی نیوز چلے گی۔ آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، آج باپ کا نام کیا ہے بھائی، اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمیع بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیرشاہ بھائی کا انتقال، اور شہید، تو ویسے ہی شہید ہو یار، آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ دیکھو کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ، پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے، یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے جیتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو یہ ہوگا بھائی، پیدا اس لیے کیا ہے مارنے کے لیے، سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی۔ نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا، کوئی نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا، آج پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ، یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی ان کے بیٹے بھی तवक्कुस नहीं थी उनको, बहुत सख्त स्ट्रेस में गए, डिप्रेशन में गए। थोड़े दिनों में अजमेरी भाई हमारे पड़ोस में रहा करते थे, हट्टे कट्टे जवान आदमी थे, बिल्कुल फिट फाट, 35-30-35 साल उम्र होगी। मैं था, मुझे इत्तला आई कि भाई अजमेरी भाई का इंतकाल हो गया। भाई हमने कहा अजमेरी भाई का हो नहीं सकता इंतकाल यार, अजमेरी भाई तो फिट फाट नहीं जी, इंतकाल हो गया। कैसे हुआ जी? हार्ट अटैक हो गया। हमारी गली में ही सामने शौकत भाई रहा करते थे, बहुत लंबे कद, लंबा कद था उनका। सफ में जब खड़े होते ना, पता चल जाता ये शौकत भाई है। कुछ लोग होते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे तड़ंगे से होते हैं, वो अपने कद से मशहूर थे। यानी शौकत भाई की शौकत ही इसी से थी, शान और शौकत कद की वजह से। उनकी उम्र होगी मेरा ख्याल है 25 से 30 साल। तुर्की गए पढ़ने के लिए, तो वालदेन भी बड़े खुश थे, चलो हमारा बेटा भी टर्की जा रहा है, पढ़ाई मुकम्मल होगी, वहां से अच्छी जॉब मिल जाएगी। इत्तलाई की थी उनका इंतकाल हो गया। अरे भाई कैसे हो गया? क्लास में बैठे हुए थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ, तो फिर उनकी डेड बॉडी आई, जवान बेटे की मौत। तो मैं सोच रहा था ना, सोचते सोचते इतनी मौतें। फिर एक दिन हम बैठे हुए जी, हमारे ताया का की खबर आई जी, उनका इंतकाल हो गया। अबे भाई हमारे ताया का इंतकाल। अब हमारी दादी रोए जा रही हैं कि भाई अभी तो मिलके गए थे, पता चला जी हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, मेरे वालिद साहब और मेरे ताया में बड़ी मोहब्बत थी, तो जब ताया को दफनाया है तो मेरे वालिद साहब को बहुत रोना आ रहा था कब्र पे। 2-3 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बाज दफा आप मैयत पे रो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता 2-4 साल के बाद किसका नंबर है भाई? हमारा नंबर है 2-4 साल, ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, इसी के दरमियान हमारी दादी का भी इंतकाल हो गया। खबर आई जी हमारी वालदा की फूफी का इंतकाल हो गया, खबर आई जी हमारे फलाने का इंतकाल हो गया, डिमकाने का इंतकाल हो गया, ये हो गया। गली महल्ले में जनाजे उठते। इत्तलाई के जी हमारे मौलवी साहब का इंतकाल हो गया, जो पूरी कमेंट्री करते थे, जनाजा आ रहा है जनाजा जा रहा है, हजारों जनाजे पढ़ाए उन्होंने। लेकिन हमें इत्तला मिली कि जी मौलाना साहब का इंतकाल हो गया। धचका लगा हमारे दिल पे, क्योंकि कई साल उनके साथ हमने, 30 साल हमने उनके साथ गुजारे थे। 30 साल इंसान किसी के साथ गुजारता है, मोहब्बत हो जाती है उससे, इंतकाल हो गया। तो इतने जनाजे, इतने एक्सीडेंट। हमारे जामिया के एक उस्ताद, हमारे बड़े क्लास फेलो, बहुत क्लोज, एक दिन इत्तलाई, उनका इंतकाल हो गया। भाई अभी तो कल तो गपशप लगा के गए जी, कार का एक्सीडेंट हुआ है जी, इंतकाल हो गया। मैं न्यू कराची में इमाम था, एक बुजुर्ग थे बड़े जबरदस्त, उनसे हमने बयान करवाया, बड़ा प्यारा बयान करते थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। अगली दफा मैंने रब्ता किया, पता चला जी इंतकाल हो गया। अबे भाई कैसे इंतकाल हो गया जी? वो अंदरून सिंध कहीं गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। तो इंतकाल पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो नहीं। आपको ये क्या बयान लेके बैठ गया भाई? यही तो बयान है। मौत 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 मौत, अल मौत लैस मिनहुल फौत। हर चीज से भाग सकता है इंसान, मौत से किसी का बाप भी नहीं भाग सकता। और बिहारियों में मशहूर है कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि कोई तुक नहीं बनता, कन्वेंस का कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप सोचो। कुत्ते के लिए कन्वेंस के बगैर ऊंट तक पहुंचना आसान है, किस कदर प्रॉब्लम की चीज है ना। लेकिन कुत्ता पहुंच जाता है बगैर कन्वेंस के, बाकायदा उसको गाड़ी लगवानी पड़ेगी, कुत्ते को सीढ़ियां लगवानी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, लेकिन पहुंच जाता है। कुत्ते के कद को देखो और ऊंट के देखो, लेकिन जब इंसान की मौत आती है तो कुत्ता पहुंच जाता है वहां पर। और भी बहुत वाकियात हैं अपनी जिंदगी में, फला मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, नाना का इंतकाल हुआ, नानी का इंतकाल हुआ, और अभी 2-4 मुंह में आने लगे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है। वो बोलेंगे अबे हमें क्यों मार रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारी दुआएं। तो मेरी बड़ी हमशीरा का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ऐसे स्टेज पे पहुंच के पता चला कि बचने की उम्मीद खत्म, डॉक्टर ने बता दिया भाई यकीनी मौत है। कुछ दिन पहले एक साहब मिलने के लिए आए, तो ऐसे हड्डियों के ढांचे बने हुए थे। जवान आदमी था, कहता मुझे कैंसर है और डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी मौत वाकई हो जाएगी। बहुत बेचारे की हालत खराब थी। इत्तला गई एक दो महीने में कि उसकी इंतकाल हो गया है। तो भाई बात यह है कि मौत एक ऐसी चीज है जिससे हम भाग नहीं सकते। सब ने मरना है। डॉक्टर क्या कहते हैं आप देखें, YouTube पे जब सर्च करें ना, एंटी एजिंग, बुढ़ापे से रोकने वाली दवाएं, बुढ़ापे से रोकने वाली खुराक, कहीं भी YouTube पे लिखा हुआ होगा, फौरन दिल चाहता है इंसान क्लिक करे, यार कौन सी चीज है जो हमें बूढ़ा होने से रोक सकती है। तो सारी दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे हकीम इस पर मुत्तफिक हैं कि आप बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो कर सकते हो, ब्रेक बोलो नहीं लगा। ये नहीं हो सकता कि बुढ़ापे को आपने ब्रेक लगा दी, रोक दिया, ना ना ना। ये हो सकता है कि आपने 60 साल में बूढ़ा होना था तो बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल किया तो आप 70 में बूढ़े हो रहे हो, बहुत ज्यादा ख्याल किया तो 80 में जाके हो रहे हो। ये नहीं हो सकता कि 60 साल में आप रुक जाओ, आपका एक बाल सफेद था तो अब एक ही रहे, ना 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 ना। 40 साल की उम्र में एक बाल सफेद होता है, जवान आदमी कहता है यार एक बाल है, नोच के निकाल दो, पता ही ना चले हुआ क्या। एक दिन उठता है सुबह को, दूसरा बाल भी सफेद, कहता है यार इसको भी नोच लो, क्या है, उसको भी नोचा, फिर इतने सफेद, कहते हैं नोचाऊंगा तो गंजा हो जाऊंगा भाई। फिर वो कलर लगाना शुरू करता है, फिर नीचे से सफेद बाल बता रहे होते हैं कि कलर है ये, जब जड़ों से बाल उठते हैं ना वो बता रहे होते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है। मछली खाता है, ये खाता है, वो खाता है, जो मर्जी कर लो मेरे भाई, एक दफा जब सफेदी आना शुरू हुई, सफेदी की ब्रेकें क्या है, फेल, सफेदी की ब्रेकें फेल हैं, फेर नहीं होती। तो पैगंबरों की यही तो दावत है भाई। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह कहते हैं जब जहन्नमियों को जहन्नम के किनारे पे लाया जाएगा जहन्नम में डालने के लिए, तो आग को देख के वो कहेंगे ना कि ये तो बहुत सख्त अजाब है, तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर लेता, क्या हमने तुम्हें इतनी एज नहीं दी थी। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास, इधर तवज्जो मेरे भाई, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आ गया था। यानी अल्लाह कहेंगे हमने तुम्हें इतनी उम्र दी थी कि जिससे तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो नसीहत हासिल हो जाती, पता चल जाता सही गलत क्या है, यानी अकल से भी तुम फैसला कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास एक डराने वाला भी आया था। अब ये डराने वाला क्या है, तो मुफस्सिरीन ने बहुत सारे मिसदाक इसके बयान किए हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को डराती हैं कि मौत का वक्त अब करीब है, इंसान का बच्चा बन जा। फरमाया उनमें नज़ीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, नबी ने आके हमें डराया भी है, खुशखबरियां भी दी हैं। उनमें बुढ़ापा भी है, और उलमा ने उसमें लिखा है उस नज़ीर जो कुरान ने कहा ना तुम्हारे पास डराने वाला आया, उसमें सफेद बाल भी हैं। सबसे पहली अलामत जो आपको डरा रही होती है ना, जो हम डरते तो नहीं है, हम कुछ और ही कामों में लग जाते हैं, वो क्या है, बालों का सफेद। ये सबसे पहली अलामत है कि अब आप रिवर्स होना शुरू, जितना पावरफुल होना था ना, कुरान क्या कहता है भाई, हमने सुम्मा युख्रिजुकुम क़िफ़ला, अल्लाह जब तुम्हें मां के बतन से निकालते हैं तुम कमजोर होते हो, खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, कमजोरी में बनाया अल्लाह ने तुम्हें, बहुत कमजोर, आहिस्ता आहिस्ता खुराक मिलती है, दूध मिलता है, पराठे मिलते हैं, डबल रोटियां, शुक्र है वो भी मिल रही हैं आजकल, तभी बच्चे डबल रोटी जैसे बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल पराठे मिलते हैं, रोटियां मिलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा क्या होता है, पावर पकड़ना शुरू। ये पावर कब तक चलती है, मेंटली ग्रोथ भी होती है उसकी और जिस्मानी ग्रोथ भी होती है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दहु व बलगा अरबईन सनतन, 40 साल तक अपनी फुल ताकत और कुव्वत को पहुंच चुका होता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, तभी माहिरीन कहते हैं ना पहुंचता तो 30 साल में, क्योंकि 30 साल शबाब की इंतहा है, 30 से 40 साल तक तकरीबन एक ही जैसी कंडीशन रहती है उसकी। तो मेंटली ग्रोथ 40 साल तक इंसान की कंप्लीट। इसलिए कुरान ने इंसान की जो लास्ट स्टेज है ना, जिसके बाद अब उसने ढलकना है, अब रिवर्स होना है, वो कौन सी एज को करार दिया है? बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, 40 साल। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप 40 साल में भी ताकतवर नहीं हो तो अब आप फिक्र छोड़ दो ताकतवर होने की, अब आप कोई और काम करो, ठीक है ना, पावरफुल होने की फिक्र आप। बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, अब ताकतवर होने की फिक्र। 30 साल में भी आप ताकतवर नहीं हो तो अब आप कोई और काम करो, ये काम आपके बस का होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक 30 साल में भी, बिल्कुल बारीक बारीक 40 साल में भी वो कहते हैं यार मैं मोटा हो जाऊं। अब आप मोटे तो हो गए, लेकिन वो गलत वाले मोटे हो गए, अब आप चर्बी वर्बी चढ़ सकती है, घी का डब्बा बन सकते हो अब आप। अब वो जो एक जो मसल की पावर होती है वो लाना बहुत मुश्किल काम है, समझते हो, वो बहुत मुश्किल है। तो बलग अशुद्धहु, 40 साल तक पहुंचा तो अब यहां से रिवर्स होना। मेडिकल साइंस भी यही कहती है भाई, 40 साल के बाद अब आप वापस, कितना जोर लगा लो अब आपके मैं वापस ना जाऊं। वापस का क्या मतलब, वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसुहु फिल खल्क। कुरान कहता है जिसको हम उम्र देते हैं हम उसको खल्क में वापस रिवर्स करते हैं। रिवर्स में ताकतवर होगा या कमजोर होगा? कमजोर, दिमागी कमजोरी भी, जिस्मानी कमजोरी भी। तो वापस, तभी आप देखो जब इंसान वापस होना शुरू होता है, कमर झुकना शुरू। बचपन में कैसे चलता था, बच्चे जब चलते हैं ना, एक पांव उधर जा रहा है एक पांव। हमारे एक रिलेटिव आए जो बड़े, मैंने एक दौर में देखा था उनको 15-20 साल पहले, बड़े यंग जवान ना फिटफाट, तो अब आए कुछ दिन पहले, अब हमारे घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो एक पांव उधर को जा रहा है एक पांव। मैंने कहा ये आप चढ़ कैसे रहे? कह रहे हैं बस यार वो दिन गए। कह रहे हैं वो दिन गए, अब तो ऐसे ही है। और हर स्टेप पे आवाज भी निकल रही है, जोर लगता है ना, आह की आवाज आती है। वो एक बूढ़ा आदमी कहीं चलता हुआ जा रहा था, कहीं ठोकर लगी तो उसको अपनी जवानी याद आई ना, ठोकर लगी एकदम बेचारा लुढ़का 3-4 कदम, तो कहने लगा हाय जवानी। फिर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, फिर आहिस्ता से कहता है भाई तूने जवानी में कौन से तीर मार लिए थे? तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान क्या होना शुरू होता है, रिवर्स। और फिर हर आने वाला दिन उसको तड़पाता है। हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया। इंसान की जिंदगी के 15-20 साल तो खेलकूद में गुजर जाते हैं, उसमें तो कोई होश ही नहीं होता। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, जवानी जब होती है तो फिर इश्क मौशकों में लगता है। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, सारे जो बल निकलना शुरू होते हैं वो कब होते हैं, बुढ़ापे में। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जब मौत आएगी ना तो उस बुढ़ापे को भी याद करेगा कि यार कम से कम एहसास तो था ना, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत लज्जत का एहसास हो जाया करता था। तो भाई इसी का नाम दुनिया है, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला तुहिब्बु दुनिया, दुनिया से मोहब्बत बोलो मत करो, दिल मत लगाओ दुनिया से। देखो कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत बड़े जुर्म हैं लेकिन वो गुनाह समझे नहीं जाते, हालांकि ज्यादा बड़े गुनाह हैं वो और उनके नुकसानात भी ज्यादा हैं। ज़िना एक गुनाह है लेकिन लोग इसको गुनाह समझते भी, वो जुमला मुकम्मल करना है आप लोगों ने, ज़िना एक गुनाह है लोग इसको गुनाह समझते हैं, क्यों नहीं है भाई, हैं इतने भी काफिर थोड़ी हुए हैं लोग के ज़िना को हलाल समझना शुरू कर दें, ये कह रहे हैं नहीं है। ज़िना एक गुनाह है लोग इसको क्या समझते हैं, गुनाह। नमाज छोड़ना गुनाह है लोग इसको क्या समझते हैं, गुनाह। हज फर्ज हुआ आपने नहीं किया ये गुनाह है लोग इसको क्या समझते हैं, गुनाह। दाढ़ी काटना भी माजरत के साथ क्या है, गुनाह है। अब तक तो गुनाह समझते थे, अब कुछ स्कॉलर आ गए जिन्होंने इसको गुनाह की फहरिस्त से निकाल दिया, वरना गुनाह है, पहले भी था अब भी है आइंदा भी رہے گا، نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت، اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں، میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے، ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی. اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے. وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا. یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں، تو دو ہی حل ہیں. یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں، کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نا، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، کس تو بتو بس تفر اللہ. ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے ہیں کوئی، اس سے ہماری صحت تو کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں وہاں پہ، سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی، مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی ہے، تو ٹھہرکی تو یہ لوگ ہوئے. خیر، تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا، میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی، بالکل بوڑھی عورتیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو، وہ کام کرتی ہیں، آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی، آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ، ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ، واللہ عالم، واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال. تو اب آپ کا جہاز میں بیٹھنا इसलिए जायज नहीं है कि वहां एयर होस्टेस चाय लेके आती है, तो भाई फिर तो कहीं भी बैठना जायज नहीं है आपके लिए, कहीं भी जाना जायज नहीं है। तो इसलिए एतराज करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोच लिया करें, अपने आप को उस जगह रख के सोचा करें कि मुफ्ती साहब की जगह अगर आप वैनकूवर में होते और आपको कोई लेक पे घुमाने के लिए लेके जाता और आपको कोई लांच में बिठाता और बिठाने वाली लड़की होती, तो आप क्या करते? छोड़ देते उसको कि चूंकि लड़की बिठा रही है। हालांकि लड़की से कोई हमारा लेना देना था नहीं, वो इंग्लिश में ठिश पिश बहुत बोल रही थी। जब ज्यादा उसने मेरे साथ इंग्लिश बोली है ना, तो मैंने एक दोस्त से बोला, मैंने कहा पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उसको बोले इंग्लिश में बात करे मेरे से। खैर, मैंने कहा घंटे से पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोल रही है, इसको बोलो तमीज से किसमें बात करें, इंग्लिश में। उसको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कहा। खैर, अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए मैंने कहा ये, क्योंकि इंग्लिश बोले जा रही थी इतनी फास्ट, तो इसलिए मैंने फिर मजाक में उससे कहा कि मैंने कहा इसको बोलो ये पंजाबी छोड़ के मेरे से किसमें बात करे, आप लोग की समझ में नहीं आया तो उसकी क्या समझ में आया होगा। खैर, तो एतराज तो लोग करते चले जा रहे हैं। तो हाँ, ये एक एतराज बनता है कि ऐसी वीडियो जिसमें इस तरह स्लीवलेस ड्रेस में कोई लड़की हो, ऐसी वीडियो YouTube पे नहीं डालनी चाहिए। ये एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसका जवाब ये, वो मैंने नहीं डाली, वो किसी और ने बना के डाल दी है। और एक और बात से बात चलती है, ये जो मेरी आजकल बहुत ज्यादा वीडियोज आ रही है TikTok पे, यूं चलता हुआ जा रहा हूं, फिर यूं दाएं देख रहा हूं, फिर क्लास में जा रहा हूं, ये मैं नहीं बना रहा, ना मुझे ये तर्ज अमल पसंद है। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मैं क्लास में जाता हूं, कोई तालिबिन बना रहा होता है, मैं नीचे जामिया तो रशीद के पार्क में चाय पी रहा हूं, वहां से कोई तालिबिन बना रहा है, हम रोक रोक के थक गए, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये काम मैं नहीं करता। और मैं तलबा से कहता हूं, ये फनकारों पे अदाकारों पे ये चीजें सूट करती हैं, स्टाइल मारना, गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, फिर यूं जा रहे हैं, फिर यूं स्टाइल मारा, ये एक्टरों पे के काम है, ये उलमा के पे सूट ये चीजें नहीं करती। तभी से जिंदगी गुजारो जो ये शोबाजी छोड़ दो। तो ये भी मैं, मेरा TikTok पे कोई अकाउंट है ही नहीं, TikTok पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। तो ये सब लोग कर रहे हैं अपने चैनलों को ग्रो करने के लिए, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूं आ रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ऐसे स्टाइल मार रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा। खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई कि देखो, दुनिया से मोहब्बत ये जुर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया से मोहब्बत जुर्म है, अच्छा देखो, जितने भी गुनाह है ना, वो डिप्रेशन पैदा करने में इतने मुआविन मददगार नहीं है। दुनिया से मोहब्बत एक ऐसा गुनाह है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा करता है। ये कुछ गुनाह ऐसे है ना जिसकी सजा इंसान को दुनिया में मिलती है। क्या ख्याल है भाई, हेरोइन पियोगे, आखिरत में ठुकाई बाद में होगी, दुनिया में सजा पहले। वो क्या सजा है? थोड़े दिनों में हड्डियों का ढांचा बन जाओगे, काला रंग हो जाएगा, मुंह से बदबू आएगी, मरे हुए मिलोगे किसी पाइप के बरसाती नाले के अंदर से। ये दुनिया की सजा है। क्या ख्याल है? जिस्म तड़पता है, खराब होता है। तो कुछ जुर्म ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में बाद में मिलेगी, दुनिया में पहले मिल। जैसे नशे हैं, जो नशा करते हैं उनको दुनिया में भी बर्बाद हो जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, यानी डिप्रेशन से मुराद दिमाग खराब होना, जब नहीं मिलती तो परेशान होते हैं। तो ऐसे ही खूब अच्छी तरह समझो, दुनिया की मोहब्बत एक ऐसा जुर्म है जिसकी अल्लाह दुनिया में सजा देते हैं। वो सजा क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, बेसुकूनी। इसलिए अगर अपनी जिंदगी को खुशियां भरी बनाना चाहते हो ना, जन्नत तो आखिरत में बाद में मिलेगी, दुनिया को अगर जन्नत बनाना चाहते हो तो अल्लाह रसूल ने जो हुक्म दिया कि दुनिया से मोहब्बत ना करो, इस हुक्म में अल्लाह रसूल को फॉलो करो। समझते हो कि नहीं समझते? अब सवाल वो घूम फिर के आता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि हम दुनिया से मोहब्बत ना करें? अगर नहीं करेंगे तो दुनिया कमा सकते हैं फिर हम क्या? भाई, इंसान को जिस चीज की तरफ अट्रैक्शन होती है उसी चीज की तरफ जाता है, या जिसकी तरफ अट्रैक्शन ना उधर जाएगा? अरे मुझे एक बात बताओ, दो रिश्ते आए आपके लिए, एक चुड़ैल का रिश्ता आया और एक खातून का रिश्ता आया, किसकी तरफ जाओगे? चुड़ैल की तरफ जाओगे? हालांकि वो भी तो लेडीज ही है, सिर्फ जिन्नात की लेडीज है वो। जिन्नात में लेडीज को प्यार से क्या कहा जाता है? चुड़ैल। उनका प्यार चुड़ैल, ऐसे प्यार से यही कहा जा रहा है, तो सोचो नफरत से क्या कहा जाता होगा। जिन्नात में किसी को प्यार से चुड़ैल कहा जाता है, तो सोचो نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے, جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں, جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے, کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا, اوپر سے بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ, ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے بھائی, انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ, آپ نے کھایا پیٹ ویٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں, پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے, وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا ککڑی سبزیاں کدو یہ ٹھنڈے ہیں, انڈا ہے مچھلی ہے اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو کھاؤ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا لکھنؤ والا وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں, اچھا وہ بیچارہ جو ریڑی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا, پنجاب سے تعلق تھا اس کا, وہ اردو سے کیا اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے عدد کے لیا, یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن, دنادن بکتے ہیں, دنادن لینے ہیں لو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن, ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم, میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں, ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے, دیکھو عام عربی میں صلات کا لفظ صلات کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے, حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلات کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین, صلات ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے تو دعا کے معنی میں, اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلات پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے, دعا کے معنی میں بھی نہیں رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلوا کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے صلو علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم, ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کا کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی، پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ، ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جس جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا، اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو، وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو، نیاگرا فال بولو مت جاؤ، شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو، صحیح ہے نا، بیوی بچوں سے محبت مت کرو، یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں، گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی، پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا، سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف، نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بےچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے، لیکن یہ گھڑی ورہبانیت نبتدعوها، قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گھڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا، اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا، اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کہ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نہ نہ نہ، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ 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 چیزیں گرم چیزیں، یہ یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت، اور تخت بھی اتنا لگژری، ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے، तो दुनिया की मोहब्बत का अगर ये कॉन्सेप्ट होता जो पादरियों ने बनाया, तो इस तसव्वुर में क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे उतरते हैं? आप लोग, मुझे लग रहा है अब सब भूल भुलैया हो गए, जो बयान सुनने के आदाब थे वो सब खत्म हो गए, भूल गए। जब नहीं हो तो नहीं बोलना है आपने, हाँ हो तो हाँ बोलना है, गर्दन हिलानी है, यूं करना है, कुछ मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे लगेगा कि कुछ आप लोग मेरे साथ, मैंने पराठा नहीं खाया तो आपने तो कुछ खाया होगा ना। तो दूसरी बात यह कि फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह कहते हैं इस्लाम इंसान की वो फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो इंसान की फितरत मरगूब चीज देख के हटना है या उसकी तरफ जाना है? जाना है। तो इस्लाम कैसे रोक सकता है एक ऐसी चीज से जो आपकी नेचर के खिलाफ हो? कैसे रोक सकता है भाई? तो मोहब्बत का मतलब क्या है? सवाल ये पैदा होता है ना फिर, भाई मुफ्ती साहब आप खुद बता दो कि जिस दुनिया से हमें अल्लाह ने मोहब्बत से मना किया उसका मतलब है क्या? वो वाला मतलब तो नहीं है जो पब्लिक समझ रही है। देखो मोहब्बत का मतलब है, मोहब्बत ही है, लेकिन उसका एक खास मायार है कि इतनी लीगल है इतनी इलीगल है। इस क्वांटिटी से ज्यादा हुई, पायलट जब जहाज में सवार होते हैं ना, मैं तो पायलटों से भी बड़ी सलाम दुआ है मेरी, तो मैं पायलटों से पूछता रहता हूँ क्या खुदा नखवास्ता पायलट अगर पी के आ गया, हमारे पायलट तो नहीं पीते मुसलमान पायलट, लेकिन बहुत सारे जो गैर मुस्लिमों के पायलट हैं वो तो पी के भी बैठते हैं ना। तो आदमी जब जहाजों में बहुत सफर होता है तो उसको डर होता है कि यार इन लोग को तो पीने की आदत है, पता चला पायलट साहब दो बोतलें पी के ज्यादा आ गए और जहाज उल्टा हो गया, वो समझ रहे हैं सीधा है, हालांकि वो खुद उल्टे हैं। ये भी खतरा होता है ना कि पायलट ने पी ली और समझ रहा है कि मैं उल्टा हूं, तो अपने आप को सीधा करने के चक्कर में कोई भरोसा नहीं होता पीने के बाद क्या हालत होती है। तो मैंने एक पायलट से पूछा, मैंने कहा दुनिया में लॉ क्या? वो कहते हैं भाई लॉ ये है कि इस क्वांटिटी से ज्यादा अगर अल्कोहल की मकदार आपके ब्लड में हो तो आप पे आपको सजा होती है। ड्राइविंग में भी ये उसूल है, वो चेक करते हैं वहां जगह जगह, आपने देखा होगा अमेरिका कैनेडा वगैरह में ना, वो पुलिस वाला आता है पता नहीं कोई आला लगा के चेक करता है, उसको फौरन पता चल जाता है दो ढक्कन ज्यादा तो नहीं पिए इसने कहीं, पूरे ढक्कन नापे हुए होते हैं, तीन ढक्कन अलाव है चौथा ढक्कन, तो उनका पूरा हिसाब किताब हम उसको ढक्कन से ताबीर करते हैं, उनका कोई खास क्वांटिटी या यूनिट है उनके नापने के। ढक्कन में जो मजा है बोलने में वो यूनिट में थोड़ी है। तो वो एक पूरा उनका एक ये है भाई, इतनी इलीगल है इससे ज्यादा इलीगल है। तो वो कहते हैं शराब अलाउ नहीं है, तो मतलब उनके ये नहीं होता कि अलाउ ही नहीं है, मतलब इतनी क्वांटिटी से ज्यादा अलाउ नहीं। आपको लाइसेंस जब मिलता है तो आपकी नजर टेस्ट की जाती है, यानी की जानी चाहिए, चाहती नहीं है, नाबीनाओं को भी बार दफा मिल जाता है हमारे यहां। तो उसमें ये है कि भाई इस हद तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, चश्मे से रिकवरी हो जाएगी, एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर नजर खराब है, दो के चार नजर आ रहे हैं आपको सिग्नल लेके, आप समझ रहे हो कितने पुलिस वाले खड़े हुए आगे, चार या तो मसाइल होंगे ना, आप समझ रहे हो कि ये वाला असल है इसको बचाना है, हालांकि वो आपको नजर आ रहा है, यानी आपने जिसको झूठी मूठी का समझ के उसको टक्कर मार दी, आपका ख्याल था ये तो मुझे नजर आ रहा है, असल में वो वाला है जिसको बचाना है मैंने, हालांकि असल ये था वहां से गुजार देते आप गाड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है भाई, इस हद तक तो ठीक है, इससे ज्यादा नजर खराब होगी लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। तो हर चीज में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हर चीज में एक मैयार है और हर इदारे का अलग मैयार है। फौज का मैयार जरा ज्यादा ऊंचा होता है, फिर उसके बाद पुलिस का मैयार है वो थोड़ा सा कम, रेंजर्स का उससे कम, पुलिस का उससे कम, ऐसे ऐसे ये सेटअप चलता है। तो मेरे भाई जब अल्लाह मियां हमसे कहते हैं कि दुनिया से दिल ना लगाओ, तो दिल लगाने का भी अल्लाह के यहां एक मैयार है। एक हद तक दिल लगाना ये ना सिर्फ जायज बल्कि जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी, लेकिन उसकी तरगीब देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो खुद ब खुद लगेगा। कभी आपने किसी को भूख लग रही हो, आप उसको रोटी के फजाइल नहीं सुनाते कि देख जब शदीद भूख लग रही हो तो रोटी खा लेनी चाहिए, वो कहेगा आपके मशवरे के बगैर भी मैं ये काम कर लूंगा, आपको फंटर बनने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है। तो इसलिए शरीयत में दुनिया से दिल लगाने के फजाइल कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद बखुद लगता है, नेचुरल है। पाबंदियां लगाई हैं कि भाई यहां तक लीगल है, लेकिन ये जरूर बता दिया कि जितना लीगल है उसको इलीगल समझना हराम है। जितना लीगल दिल लगाना है ना, उतना क्या है, लीगल है। उस पर अगर कोई पाबंदियां लगाता है तो वो अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करने वाला है। तभी इस्लाम ने जिस एहतमाम से कुरान ने हमें ये बताया कि अल्लाह के हराम को हलाल नहीं कर सकते, उतने ही एहतमाम से अल्लाह ने यह भी बताया कि अल्लाह के हलाल को हराम भी नहीं कर सकते। पाबंदी है। लोग हमसे आगे पूछ रहे होते हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला से एक मसला पूछा गया, उस वक्त के फुकहा का उसमें इख्तलाफ था, इमाम अबू हनीफा के नजदीक वो जायज था। मसला क्या था वो मैं बयान करूंगा तो यूट्यूब पे एक नई जन छिड़ जाएगी ना, इसलिए मैं असल मुद्दा को बयान करता हूं जो उस मसले से सबक देना मकसद है। वो है, इमाम हनीफा के नजदीक जायज था, बाकी फुकहा क्या कहते थे उसको, नाजायज। अब किसी ने इमाम साहब पे इल्जाम लगाया कि अबे ये लोगों को इजाजत दे रहे हैं, रुख्सतें दे रहे हैं, देखो वगैरह वगैरह ना। तो किसी ने उनसे कहा कि जब आपकी नजर में ये जायज है तो आप खुद क्यों नहीं ये काम करते, और अगर खुद ये काम नहीं करते तो नाजायज क्यों नहीं कहते फिर इसको। तो इमाम साहब ने फरमाया, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है क्योंकि ये इबारत पढ़े हुए भी 20-25 साल हो गए दौरे हदीस में, पूरे अल्फाज याद नहीं है। गालिबन ये था कि मेरे एक हाथ में चांद रख दें, सूरज रख दें, या ये कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत दे दें, यानी जितना भी मुझे फोर्स करें, मुझे ये कहलवा दें कि ये जायज है, सॉरी नाजायज है, तो मैं उसको नाजायज करार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इज्तिहाद ये कहता है कि इसके नाजायज होने की दलील नहीं है। तो पूरा जोर लगा दो, मेरे मुंह से ये नहीं निकलवा सकते कि ये नाजायज है, क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा, इमाम साहब की बात का मतलब क्या कि मैं एक चीज को जायज समझ रहा हूं और मैं लोगों के दबाव में या तानों में आके उसको नाजायज कह दूंगा तो अल्लाह के हलाल को हराम करना भी कम दर्जे का जुल्म, बोलो नहीं है। YouTube के मसले में ना लोग हम पे यही जोर लगा रहे हैं, कभी डॉक्टर साहब का बयान पेश कर रहे हैं, कभी फलाना का बयान पेश कर रहे हैं कि YouTube की अर्निंग को हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब हराम कहें, फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके अपने चैनल है। हम 20 दफा जवाब दे चुके, भाई हमारा चैनल तो बाद में बना है, हमें तो पता भी नहीं था उस वक्त जब हमने इसका फतवा दिया जायज होने का। तो वो क्या है, फोर्स कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं भाई हमें इस दलील का जवाब दे दो, मैं उसी वक्त नाजायज कह दूंगा, 2 सेकंड भी मुझे नाजायज कहने में नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज को हम जायज समझ रहे हैं, हम उसको नाजायज कहते हैं पब्लिक के प्रेशर में आके, तो कयामत के दिन उल्टे हम लटके हुए होंगे, आप लटके हुए नहीं होंगे। समझते हो गए नहीं समझते? और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजों को और भी नाजायज करार देना पड़ेगा। अब ये टॉपिक चल गया तो मैं इसको, क्योंकि लोग फिर शॉर्ट क्लिप बनाते हैं, पहले वो इमाम साहब की बात मुकम्मल कर लूं। तो इमाम साहब ने कहा कि मुझसे ये निकलवा दो ना कि ये नाजायज है, पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया जाएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कहूंगा। तो ये मुज्तहिद और फकीह का काम होता है कि अगर वो किसी चीज को जायज समझ रहा है तो उसके नाजायज करार देना भी जुर्म है, जैसे नाजायज को हलाल कर देना, हराम को हलाल कर देना जुर्म है, ऐसे ही हलाल को हराम कर देना भी क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। मुशरिकीन यही जुर्म तो किया करते थे। हलाल हराम की अथॉरिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। अब मैं एक मिसाल देता हूं यूट्यूब की आमदन से मुताल्लिक। लोग मुझे कह रहे हैं बिनोरी टाउन का फतवा है, दारुल उलूम कुरंगी का तो कोई इस बारे में वाज़े फतवा मौजूद नहीं है। बिनोरी टाउन जो यूट्यूब की आमदन को हराम कहता है ना, वो कहते हैं वो लोग, वो इसलिए कि वो वीडियो ही को हराम कहते हैं। ये जो हमारी वीडियो बन रही है या उलमा की वीडियोज आ रही है, वो इसी को तस्वीर में दाखिल समझते हैं। तो अगर आप उनके इस फतवे को फॉलो करते हो तो फिर पूरा फॉलो करो, आप फिर वीडियो ही को हराम समझो, यूट्यूब की में किसी भी कॉन्टेंट को हराम समझो आप। तो हमें इस पे एतराज नहीं है, वो भी उलमा है और अहले हक उलमा है। जब उलमा का किसी मसले में इख्तलाफ होता है तो कोई किसी की भी राय को भी फॉलो कर ले तो उसमें इससे मलामत नहीं होती। तो अगर आप उनकी इस राय को फॉलो करते हो कि वीडियो हराम है, फिर यूट्यूब छोड़ दो, आप टिकटॉक में जायज चीजें देखना भी छोड़ दो, ये उनकी राय है। तो जब उनकी ये राय है तो फिर तो वो यूट्यूब का सारा सेटअप ही उनके नजदीक नाजायज हो गया ना। हमारे यहां तो जो फतवा दे रहे होते हैं ना यूट्यूब की आमदन हराम है, वो यूट्यूब पे आके ही दे रहे होते हैं, तो बिनोरी टाउन की नजर में तो ये अमल ही नाजायज है, यूट्यूब पे आना ही नाजायज है आपका, बात समझ में। दूसरी बात ये मसला वैसे अभी बयान करने का था नहीं, अच्छा भला हमारा दुनिया की मोहब्बत में बयान चल रहा है, फिर ये यूट्यूब को मैंने घुसेड़ दिया, ये जुम्मे की नमाज के बाद मैं बयान करूंगा, ताकि हमारा टॉपिक जुम्मे की नमाज के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा, उसमें मैं यूट्यूब की आमदन का टॉपिक छेड़ूंगा, अभी नहीं छेड़ूंगा मैं, क्योंकि फिर मेरा जो अच्छा भला एक बेहतरीन टॉपिक चल रहा है वो रह जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने जो दुनिया की मोहब्बत से मना किया, मैंने अर्ज किया कि उसमें जो जायज चीज है उस पे भी पाबंदी लगाना इस्लाम में हराम है। कोई निहारी खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई देख के ढक्कन देख से जब आप बिरयानी का ढक्कन हटाते हैं उसकी खुशबू से इंजॉय कर रहा है, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी और अल्लाह की तरफ से भी इस पर पाबंदी नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, तो हमारे जब मेरी वालदा और हमारे घर की खवातीन गई हजरत के घर ना, बयान होता था तो हजरत की अहलिया से मिली तो उन्होंने बहुत सोना पहना हुआ था, हमारे हजरत की अहलिया ने गोल्ड बहुत पहना हुआ था, और भी बहुत सारी खवातीन गई तो वो सब आके कह रही भाई ये मौलाना है, इनकी बेगम ने इतना गोल्ड पहना हुआ है, ये किस टाइप के मौलाना है? समझ में आ रही हो? हजरत की राय ये थी कि जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो मैं घर वालों को गोल्ड ज्यादा पहनाऊंगा, और हजरत स्पेशल उस दिन लाजमी उनसे कहते थे पहनो जिस दिन खवातीन बयान में आए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मौलवियों के घरों का या दीनदारों के घरों का है ना, और ये जो दुनिया से मोहब्बत करने का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो कि इसका सही मतलब क्या है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही। मैं पूरे आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब हदीस का रेफरेंस नंबर नहीं दे रहे, भाईजान हम पूरी अरबी की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं आपको, पूरी अरबी की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं ना, आप गूगल पर ठक कर लिखो, ठक करके आ जाएगी, लिखने में टाइम होगा, आने में टाइम नहीं लगेगा, पूरी हदीस अरबी में पढ़ के सुना रहा हूं। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही। इस हदीस का शान वरूद क्या है, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, परागंदा लिबास, बाल भी बिखरे हुए, हम होते ना जो हमने इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ अपनी खोपड़ी में, हम कहते बुजुर्ग सिर्फ यही है। आज एक हमने बुजुर्ग देखा, कपड़े भी सही नहीं पहने हुए और बाल भी क्या है, मैले कुचैले और बिखरे हुए। हमारी नजर में कॉन्सेप्ट क्या है, तभी रूहानी आमिल जितना मैला होगा ना उतना ज्यादा चलेगा। फिर रूहानी आमिलों पे आ गया मैं, अल्लाह माफ फरमाए। रूहानी आमिल जितना गंदा, जितनी अंगूठियां उसकी होंगी ना, बिल्कुल छिछोरे नहीं जैसे लेडीज पना, उसमें अंगूठियां छह छह चार चार अंगूठियां यहां डाली भी होंगी, मुंह में पान, बड़ी बड़ी मूछें और मैला बदबू, जितना और जितनी उल्टी उल्टी बातें करेगा जो समझ में ही ना आए। इनके चैनल आप देख लो, इनके यूट्यूब पे बयान सुनो रूहानी आमिलों के, ना सर ना पाओ, पता ही नहीं चलता बयान बोल क्या रहा है ये। पता नहीं मुस्टंडे बने हुए लोग बैठे हुए होते हैं, रोलमा मुफ्तियाने किराम बैठे हुए होते हैं उसके सामने, ऐसे आमिलों के सामने मुफ्तियाने किराम बैठे हुए, वो मैं उनसे पूछता हूं समझ में आ रहा है, कह रहे बहुत ऊपर की बातें हैं, बहुत कितनी बहुत। अच्छा आमिलों की एक और आपको बदमाशी बताऊं मैं, जब आप किसी आमिल के पास जाएंगे ना तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल नहीं डालेगा, थोड़ा सा किनारे पे देखेगा यूं, जैसे आप है ना, आप आए मेरे पास और अल्लाह ना करे मैं आमिल हूं तो मैं थोड़ा सा साइड पे देखूंगा यूं, ये एक स्टाइल है इनका, ये एक्टिंग है, ऐसे करेंगे ये, फिर ये शो करते हैं हम आपके हमजात से बात कर रहे थे, ये शो करते हैं कि हम आपके मुवक्किल से या आपके हमजात से बात कर रहे थे, तो उससे हमने अंदाजा लगा लिया आप पे क्या है, टोटल फ्रॉड है ये, समझ लो एक्टिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितना मैला कुचैला आमिल होगा ना मार्केट में उतना ज्यादा हिट होगा वो, खैर, और जितनी लंबी लंबी फेंकेगा हमजाद मुवक्किल, कह रहे एक आप हो एक आपका हमजाद है, भाई जब कोई ऐसी बात करा बोलो टोटल मैं यही हूं जितना हूं ना, कोई हमजाद मेरे साथ नहीं है, कोई मुवक्किल मेरे साथ नहीं है, मैं टोटल जो हूं पैदा अकेला ही हुआ था और टोटल इतना ही हूं मैं। बाकी वो जो हदीस में आता है हर इंसान के साथ एक जिन है एक फरिश्ता है, वो ये हमजाद नहीं होते, वो जिन इंसान को शैतान है जिसको जिन से ताबीर किया है, वो बुराइयों की तरगीब देता है और फरिश्ता दिल में नेकी के ख्यालात डालता है, उसका आमिलों से कोई ताल्लुक नहीं है और आमिलों को वो फरिश्ते और जिन्नात लिफ्ट भी नहीं कराते, वो तो अल्लाह ने हर एक के साथ रखा हुआ है, वो तो बुराइयों की तरगीब देगा और फरिश्ता नेकियों की तरगीब देगा, वो दिल पे असर डालते हैं उसका, बाकी हम टोटल यही हैं, ठीक है ना, हमारे साथ अलग से मजीद कोई चीज नहीं है। हाँ, जब शादी होती है तो एक चीज लग जाती है आपके साथ जिसको बेगम कहा जाता है, वो फिर पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ हमेशा के लिए लग गई। तभी मैं कहता हूं कि बाहर जब जो लोग जॉब के लिए जाते हैं बेगम को साथ लेके जाया करो, वजह उसकी ये कि अल्लाह ने कहा वसाहिबती ही वबनी ही, अल्लाह ने बीवी को साहिबा कहा है, साथ रहने वाली, माँ को भी साहिबा नहीं कहा, बाप को भी साहिबा नहीं कहा, भाई को भी, बहन को भी, औलाद को भी नहीं, बीवी को क्या कहा, साहिबा। इसका मतलब ये फुल थ्रू की तरह हमेशा के लिए चिपक गई है। खवातीन को गुस्सा आता है मेरे लफ्ज पे, लेकिन भाई मैं तो तारीफ में कह रहा हूं ना, ये चिपक गई है फुल थ्रू, इसलिए कहता हूं कि जो कपड़ों में बाज दफा ना रेशमी कपड़ों पे एक धागा चिपक जाता है, देखा होगा बाज दफा बचपन में ऐसा बहुत होता था, तो हम क्या करते थे, उस धागे को हटाया, हाथ से चिपक गया, अब दूसरे हाथ से पकड़ा, इस पे चिपक गया, वो करंट होता है उसमें ना, फिर यूं यूं किया इधर चिपक गया, फिर यूं किया इधर चिपक गया, उससे जान छोड़ाना, मरोगे तो जान छूटेगी उससे, या नहा के आ जाओ, तो वो फुलत्रू कहलाता है, इस कॉल्ड फुलत्रू। तो इसी तरह जब शादी हो गई तो बेगम को अल्लाह ने क्या बना दिया, आपके साथ चिपका दिया, अब दो दो साल के लिए सऊदी अरब जा रहे हो जॉब करने के लिए, पूरी जिंदगी आप बेगम यहां है, ये शरीयत नहीं है भाई, ये शरीयत का मिजाज नहीं है, उसको साथ लेके जाओ। खैर, तो क्या बात कर चल रही थी यार, जल्दी से समेटे, आमिलों पे तो मैं आ गया था, वो तो मैं हर बयान में आता हूं, कोई नई बात थोड़ी है, दुनिया से मोहब्बत की बात चल रही थी कि एक लिमिट है, उससे कम कम जायज है, क्योंकि अगर वो मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं होगी तो हम तो रहबानियत की तरफ चले जाएंगे, कमाना छोड़ देंगे, बीवी बच्चों की फिक्र छूट जाएगी, मोहब्बतें मार्केट से शार्ट हो जाएंगी, जिंदगियां खराब। तो मैं हदीस सुना रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, परागंदा हाल, परागंदा बाल, लिबास भी परागंदा, आपने फरमाया क्या अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, फरमाया हाँ, तो आपने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है उसके असरात तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे लिबास से नजर आए। इसलिए उलमा हजरत हकीम उलमा रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि मालदारों का लिबास थोड़ा आला क्वालिटी का होना चाहिए, गरीब आदमी के पास अगर अच्छी क्वालिटी के पैसे नहीं है तो ठीक है वो कम दर्जे का लिबास पहने, मालदार के पास अगर है तो उसका लिबास क्या होना चाहिए, आला। आप कह सकते हैं इससे तो सोसाइटी में फर्क होगा, इससे मुआशरे में क्या होगा फर्क, ये दौलतमंद है ये गरीब है, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ये फर्क चाहते हैं, ये फितरत का हिस्सा है, ये आज से नहीं है हमेशा से है, दौलतमंद लोगों का पोशाक लिबास आला होता है, गरीबों का क्या होता है कम। अब सवाल पैदा होता है इस फर्क की वजह से तो गरीब बेचारा एहसास कमतरी में जाएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है एहसास कमतरी में जाने की, वजह उसकी है कि मौत के बाद सब क्या हो जाएगा भाई, बराबर। एहसास कमतरी में जब जाते हैं जब गरीब हमेशा गरीब रहता, ठेले पे ही रहता और मालदार हमेशा मालदार रहता। अभी दो हफ्ते पहले एक अरबपति आदमी का इंतकाल हुआ, इतनी दौलत के गिनी नहीं जाई, तो वही हुआ फट्टे पे ही लिटाया गया उस बेचारे को, गुसल भी वही पानी से, कोई अलग से आप जमजम या कोई तेजाब से नहीं नहलाया गया कि जी बहुत मालदार आदमी थे ये, वही फट्टे में लिटा के जनाजा पढ़ा के उनको कवर में डाला, ऊपर से स्लेव लगा के दुआ की और लोग पतली गली से निकल लिए, तो ठेले वाले के साथ भी क्या होगा, तो इसलिए टेंशन लेने का है ही नहीं। लेकिन आप ये चाहो कि अमीर और गरीब का फर्क इस्लाम में खत्म हो जाए तो ये दीन फितरत के खिलाफ होगा, ये फर्क अल्लाह ने रखा है। और सूरह ज़ुख़रुफ़ आप देखें, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़ान सुख़रिया, अल्लाह कहते हैं हमने दौलत की तकसीम में फर्क रखा है, ये तकसीम किसकी तरफ से है, अल्लाह की, ताकि कुछ लोग को ताबे बना के रखें, सारे एक जैसे हो जाएं तो मुलाजमत कौन करेगा। आपने फैक्ट्री बनाई, सबने फैक्ट्रियां बना ली, तो आपको फैक्ट्री चलाने के लिए बंदे कहां से मिलेंगे, चपड़ासी कहां से लाओगे, मजदूर कहां से लाओगे, गटर साफ करने के लिए भंगी कहां से लाओगे, सारे ही फैक्ट्रियों के मालिक, तो निजामे आलम तबाह, किसी की फैक्ट्री नहीं चलेगी, چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے جب دولت ہے تو وہ لباس پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیوند زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیوند زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس, وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں, اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی, ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی, اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں, آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی, میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں, کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا, عین ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی, 15-16 سال پرانی بات ہے, ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی, وہ لوگوں کا اعتماد آتا, کمیٹیاں 1-2 نکال دیتی, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا. یہ سچا واقعہ, آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی, وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں 200-500 روپے کی, وہ نکلتی سب کو. لوگ ایماندار, لوگوں کو اعتماد آ جاتا بھائی ایماندار انٹی ہے. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں, 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال, پیسہ اکٹھا ہو گیا, غائب مارکیٹ سے, شارٹ محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں, ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہی ہے. اچھا خیر, تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا, دولت ہے تو وہ آپ کے لباس پوشاک سے, خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے, ایک لمٹ. وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے, مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے اور کتنی اللیگل. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے, کمپیر. نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو, اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل ہے. آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی؟ کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا؟ قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے, ہوش اڑ جائیں آپ. कहने लगे भाई मैंने दुनिया बहुत कमा ली, दीन के लिए क्या कर सकता हूं मैं, मुझे अपनी कब्र की फिक्र हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार मुसलमान किसी न किसी मोड़ पे थोड़ा सा उसको खौफ आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आके उसको अटकता है कि भाई ये कितनी बड़ी नेमत है। काफिर को ये ख्याल भी नहीं आता, वो खुदकुशी की तरफ जाता है जब मौत का तस्वुर दिमाग में आता है। जब मुसलमान को मौत का तस्वुर आता है खुदकुशी की तरफ नहीं जाता, वो कब्र बनाने की में लग जाता है कि यार अब आखिरत के लिए कुछ करो। एक दफा अमेरिका से किसी का फोन आया, उस जमाने में फोन काफी उठा लिया करता था। वो साहब कहने लगे मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत अय्याशी की, और कहने लगे कोई यतीम हो तो मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर उसकी कफालत करना चाहता हूं। और फिर रोने लगे, कहते हैं यार कोई एक नेकी तो करके जाऊं ना मैं, कोई एक नेकी। तो कहने लगे कोई तालिबिल्म हो यतीम, उसकी सारी जिंदगी जो दीन की खिदमत करे सारी जिंदगी का खर्चा मैं उठाने के लिए। मुझे उसके जज्बे पे बड़ा बहुत खुशी हुई। ये नेमत अल्लाह ने मुसलमान को दी है, काफिर को नहीं दी है। काफिर तू काफिर मायूस है, उसको क्या करना है भाई। मुसलमान को डायरेक्शन तो पता है ना, जाना किधर है मेरे भाई, जाना तो बहरहाल मिट्टी के नीचे ही है। तो अल्लाह ने क्या कहा भाई, आसर अल हयात दुनिया, जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा तो दुनिया का दुनियाए मुर्दार का आशिक किसको तरजीह देता है, दुनिया को, कहते आखिरत को छोड़ दो। और आखिरत का आशिक किसको तरजीह देता है, ओ भाई ऐसी 20 दुनियाओं पे 100 दफा लात। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के एक मुरीद थे। अच्छा बाज दफा ना अपनी तरबियत के लिए हलाल से भी कुछ वक्त के लिए इज्तिनाब करना पड़ता है अपनी तरबियत के लिए। देखो अल्लाह ने जो लिमिट बनाई है ना, एक तो ये कि दुनिया की वजह से कोई हराम काम ना हो। अगर हराम की तरफ जा रहे हो तो ये दुनिया की मोहब्बत लिमिट से ज्यादा। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत में एतदाल से तजावुज ना हो दुनिया कमाने में। अगर एतदाल से हट गए तो ये भी किसकी अलामत है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। एतदाल का मतलब क्या, आपकी सेहत ज्यादा वैल्यू है या पैसों की ज्यादा वैल्यू है। सारी दुनिया के शरीयत से भी पूछो, इस्लाम कहता है सेहत पहले दौलत बोलो बाद में। डॉक्टरों से पूछो वो क्या कहेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर से पूछो भाई सेहत पहले दौलत, वो कहते हैं यार कमबख्त ऐसे पैसे का करेगा क्या, तू बादाम के पैसे हैं चबाने के लिए मुंह में दांत नहीं है, लड्डू के पैसे मिले कि मिठाइयां खाऊंगा, शुगर है खा नहीं सकता, अंडा गर्म है ठीक है ना तेरा जिगर उसको बर्दाश्त। तो ऐसे पैसों बहुत से लोग हैं, बहुत पैसा है ना खा सकते हैं ना चल सकते हैं ना सो सकते हैं, नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। दुनिया के सारे अकलमंद कहते हैं सबसे पहले सेहत, आई बात समझ में, उसके बाद रिलेशन। देखो इंसान को दौलत से ज्यादा जरूरत किसकी है, रिलेशन की, क्योंकि इंसान तन्हा पैदा नहीं हुआ। फजालहू नसबं वसहरा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें नसब वाला बनाया। जब अल्लाह ने वाला बना दिया, नसब वाला यानी ददियाल ननियाल और ससुराल, ये जब तीन खानदान वाला बना दिया अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह जो बात कहेगा वो नेचर ही की बात होगी, तो इसका मतलब इंसान इंडिविजुअल लाइफ नहीं गुजार सकता। इंडिविजुअली लाइफ इंसान को टेंशन और स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी, उसको रिलेशन चाहिए, मोहब्बतें चाहिए। गोरा क्यों टेंशन में जा रहा है, सब कुछ है मोहब्बतें नहीं है। अबे जिस कौम में बीवी अपनी चाय खुद बनाती हो, मियां अपनी चाय खुद बनाता हो, वो बीवी को अपने खर्चे पे एक चाय की प्याली पिलाने को तैयार ना हो। हमारे यहां गर्लफ्रेंड पे जायदादें लुटाती जाती हैं, बीवी तो अगली चीज है। गोरा गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे पे एक टॉफी नहीं खिलाता तो रिलेशन मिलेगा, वो कहेगी भाई अपने फायदे के लिए, मैं अपने फायदे के लिए, रिलेशन खत्म। तो तभी तो फिर बेचारे स्ट्रेस में जाते हैं, मोहब्बतें खत्म। कुत्तों से मोहब्बत मिलती है, मैंने पूरा व्लॉग बनाया था कुत्ते पे, वो देखा था आप लोगों ने, यार तुम लोग क्या देख रहे हो फिर है? कुत्ते पे व्लॉग बनाया था, एक गोरा अच्छा भला 40 साल का, वो था मैक्सिकन, मैक्सिको का था, फिटफाट बिल्कुल, कुत्ते को लेके जा रहा है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं वहां पे, जहाज में अलग से उसको परमिशन मिली है कुत्ता साथ ले जाने के लिए, उसको अलग से परमिशन मिली है, वरना कुत्तों को जहाज में अलाउ नहीं है। इतनी अभी उन्होंने तरक्की नहीं की कुत्ते को जहाज में सीट देने, लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन लिख के दें कि मैं इस कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर आपको परमिशन मिलती है, कुत्ते पे एक टैग लगता है इमोशनल रिलेशन का, कि इन दोनों का बहुत ही कोई, और जो ले जाने वाला वो कोई डॉक्टर होते हैं, बाद दफा इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग होते हैं। अबे तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हें कुत्ते की क्या जरूरत है? कहेंगे वो जवाब में, पता है क्या कहते हैं, हम इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इस पोस्ट की वजह से हमें पैसे बहुत मिलते हैं, रिलेशन और मोहब्बत बोलते क्यों नहीं नहीं मिलती, लिहाजा कुत्ते से हमें मिलती है, तो हम विदाउट कुत्ता वी कैन नॉट सफर, ठीक है ना, हमारी गुलाबी इंग्लिश है, जो लफ्ज आ रहा होता है ठोक देते हैं उसमें हम, तो नहीं सफर कर सकते हम कुत्ते के बगैर। बहुत मैंने केसेस देखे हैं वहां पे, भाई कुत्ते के बगैर नहीं हो सकता, तो ये हकीकत है। अब गोरे को बीवी वाली मोहब्बत भी कुत्ते से चाहिए, बाप वाली मोहब्बत भी कुत्ते, हमको सबसे अलग अलग मोहब्बत मिल रही है, हमें बाप की मोहब्बत मिली कि नहीं मिली, हमें कुछ होता था गम किसको होता था, ऐसा गम के हमसे ज्यादा, हम तो बचपन में बीमार हुए हमें तो पता भी नहीं होता था, रोता कौन था हमारे लिए, हमारे माँ बाप रोते थे, हमें तो पता भी नहीं कौन कौन सी दुआएं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए रातों को उठ के की है। तो ये रिलेशन हमें कहां से, ये मोहब्बत कहां से मिली, बाप की बाप से मिली, माँ की मोहब्बत, बाप की अलग मोहब्बत होती है, माँ की अलग, दोनों चाहिए इंसान को, माँ की मोहब्बत में ममतापन ज्यादा होता है, लाड़ ज्यादा होता है, बाप की मोहब्बत में, बाप मोहब्बत में ठुकाइयां लगाता है, सही है ना, कि इंसान का बच्चा बन जा तेरा मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिकर उसको होती है कि यार इसको इंसान बनाना है, इसलिए वो डांटेगा भी मारेगा भी, ये सब मोहब्बत में कर रहा होता है। तो माँ की अलग मोहब्बत होती है, माँ वाली मोहब्बत भी हमने देखी, अल्लाह ने हमें दी, सबको मिलती है, कोई हम कोई अकेले दुनिया में पैदा नहीं हुए। वो मोहब्बत क्या होती है, जब स्कूल जाने के लिए इजाफी जेब खर्ची चाहिए, अब्बा नहीं देगा, अब्बा को पता है बिगड़ेगा, वो कौन देता है, अम्मा, बिगाड़ने में पूरा किरदार कर, वो मोहब्बत नहीं रही होती है। खैर, तो अलग से वहां से आदमी अपने खांचे खोले हुए होते हैं, अब्बा के खांचे अलग होते हैं, भाई बहनों के अलग होते हैं, तभी तो कहता हूँ भाई बहन पैदा तो करो अपने बच्चों के लिए, जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ बस, तो भाई बहनों की मोहब्बत भी चाहिए बच्चों को, आपके दोस्तों की भी मोहब्बत चाहिए, ऐसे जिगरी दोस्त, अभी देखो, अभी छोड़ो मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ता दोबारा। खैर, तो ये सारी मोहब्बतें इंसान को चाहिए, अल्लाह ने इंसान को कल्ला पैदा नहीं किया, अकेले को पंजाबी में कहते हैं कल्ला, कभी अकेले में मिलेंगे तो आपको एक लतीफ सुनाऊंगा, कल्ले आदमी का काम नहीं है, लेकिन वो छप्पड़ में सुनाने का, छांव में सुनाने का, कल्ले आदमी का काम नहीं है, बस ये उनवान याद रखना, कल्ले आदमी का काम नहीं है। खैर, तो ये जो रिलेशन है ना मेरे भाई, कहां बात क्या चल रही थी, मैं तो दिमाग से निकल गई, मैं टॉपिक क्या चल रहा था, ये कुत्तों पे आ गया ना, मैं जब मैं अंग्रेज पे और कुत्ते पे आ जाऊं फिर वो टॉपिक चेंज हो जाता है, वो लिमिट की बात कर रहा था ना, नहीं अल्लाह से मोहब्बत का एक, हाँ तो हाँ मैं ये कह रहा था एतदाल, कमाने में क्या हो एतदाल, उस एतदाल में सबसे पहले सेहत, उसके बाद रिलेशन। अगर आप अपने आप को कमाने में इतना जुटा देते हो, हर वक्त तरक्की 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 गधे की तरह काम कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, इसका मतलब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। आप कमा रहे हो, मैं बहरिया टाउन में प्लॉट बनाऊंगा, कमा रहे 60 साल के बाद जाके कमबख्त तूने बना लिया, तो क्या रह गया, अब तो खत्म है ना, आगे रिटायरमेंट है, कमर में जाएगा अब क्या करेगा। तो नमाजें जाया होती, गुनाह हो रहे हैं उसकी वजह से, एतदाल से बढ़ी हुई मोहब्बत, वो एतदाल की सेहत खराब हो रही है, स्ट्रेस में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, टेंशन किस बात की ले रहे हैं भाई, पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो क्या है, कोई मसला नहीं है, खबर है आगे यार, टेंशन किस बात, टेंशन लेना इसकी अलामत है, मोहब्बत क्या है एतदाल से ज्यादा है। तीसरा, रिलेशन खराब हो रहा है, रिलेशन का क्या मतलब, कितने लोग जॉब करते हैं, बीवी बच्चों को टाइम नहीं, उनके रिलेशन की ऐसी की, जब वो घर में आते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मी एक साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में, ऐसे लोग भी हैं, बच्चों ने कभी देखा ही नहीं होता, इत्तेफाक से उस दिन आज ऑफिस से आप जल्दी घर आ गए, एक साहब ने बताया कि मैं अपने बच्चों को ना ऐसे देख रहा हूँ, यूं यूं बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता हूं तो वो सो रहे होते हैं, इतनी जल्दी मैं निकल, रात को आता हूं तो सो चुके होते हैं वो, तो भाई तो ये अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, इससे क्या करो, टाइम दो इसके साथ, इसको लेके घूमो, इसके साथ बैठो, इसके साथ गपशप लगाओ, बातें करो, लतीफे सुनाओ, लतीफे सुनो। हम अपने अब्बा का जब नाम आता है जज्बाती क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे अब्बा ने हमें टाइम बहुत दिया है। जब ऑफिस से घर आते थे बैठ के गपशप करते थे, हम दूसरों के अब्बाओं को देखते थे, यार वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते अपनी औलादों को, अपने अब्बा को हम देखते थे आते हैं ऐसी गपशप लगाते हैं और ऐसा घर का माहौल बनाते हैं। तभी उनके दुनिया से जाने के बाद गम हुआ, अब तक होता है गम, कई साल हो गए। आज बाप घर में, माँ तो दे देती है टाइम, बाप बच्चों को टाइम, बोलो, वो कह रहे मैं कमा रहा हूं। अबे तू जो कमा कमा के इनको खिला रहा है ना, ये एहसान नहीं मानेंगे, सही है ना, ये ध्यान में रखना, ये एहसान नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कोई साहब थे जिनकी वजह से आ रहा था घर में राशन, मानना चाहिए एहसान, लेकिन आजकल की औलादें बड़ी नालायक हैं। तो टाइम, यानी इतना कमाओ कि घर वालों के लिए, आपको बीवी बच्चों के लिए उसमें टाइम, बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, मिले कुछ दोस्तों के लिए भी है। ऐसा आवारा ना बनो जैसे आजकल के लौड़े लपाड़े बने हुए हैं, सारा टाइम ही दोस्तों यारों में कख भी नहीं कर रहे, वो तो दूसरी इंतहा है उसकी, मैं उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो ये चंद लिमिट्स हैं, और भी हैं इसमें कुछ, ये मोटी मोटी चंद बातें हैं जो ये बाउंड्री है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। नबी से ज्यादा मसरूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सारे काम किए आपने, मगर अपने घर वालों को भी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, घर वालों को भी वक्त दिया। तो ये बाउंड्री किसकी तरफ से है भाई? अल्लाह की तरफ। इसको अगर क्रॉस करोगे, दुनिया तो कहेगी अपने काम के साथ बड़ा मुखलिस है, तरक्की कर गया, ये कर गया, वो कर गया, यार इसको कहते हैं बिजनेस में हार्ड वर्किंग। अगर किसी ने देखनी हो तो वसीम की जाके देखे। अब ये नहीं पता वसीम के घर का हाल क्या है, बीवी बच्चे खुश हैं कि नहीं है, और सेहत देखो, शुगर हो गई थोड़ी। मैं ऐसे साहब को जानता हूं, हार्ड वर्किंग कमाने की ना, इतनी फिक्र, शुगर हो गई उनको थोड़े दिनों में, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी, दिन में भी ड्यूटी, रात को भी ड्यूटी, थोड़ी देर सोते थे और बड़े फखर से बताते थे, यार स्ट्रगल स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग। शुगर हो गई, फिर एक दिन हार्ट अटैक हुआ और इस दारे फानी से आज, यानी उनकी उम्र भी मेरे ख्याल है 35-40 साल होगी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, हम तो यही दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये हार्ड वर्किंग नहीं है मेरे भाई, ये एतदाल से बड़ी हुई दुनिया की मोहब्बत है, जिसको स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग से, इसमें ये बच्चों पे जो बहुत ज्यादा तालीम का बोझ डालते हैं ना गन पॉइंट पे, तू सीए करेगा तेरा बाप भी करेगा सीए, उसमें तो बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ होता है, लेबल ये लगाया गया होता है हार्ड वर्किंग, तरक्की असल में हवस होती है पीछे दौलत की। पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन भाई इतना ज्यादा बच्चे के सर पे मुसल्लत ना हो जाओ। अगर उसका दिल लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो जो लग रहा है भाई उस काम में लगा दो। मैंने एक बच्चे को हटा दिया पढ़ाई से, उसका दिल ही नहीं लग रहा था, वो कह रहा था कारोबार करना है, मुलाजमत करने, कहा चल भाई तेरा दो चीज कर रहा है, वरना कहीं का भी नहीं रहता, बता दूंगा आपको, बैठा हुआ यहां बयान सुन रहा है, कह रहा है मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना है। मैंने कहा पहले तो उसको समझाया, इंसान का बच्चा बन जा, नहीं पढ़ रहा, चल बता क्या करना है, तो जो करना है, चर्स नहीं बेच रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ना चर्स जी रहा है, जायज काम। इतना ज्यादा दुनिया से दिल ना लगाओ कि डिप्रेशन के मरीज बन जाओ, जो हो रहा है होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हम और आपने एतदाल से मेहनत करनी है, इरादा किसका चलेगा? अल्लाह का, मेरा और आपका इरादा नहीं चलेगा। तो माँ बाप टेंशनों में जाते हैं, हम बच्चे को ये बनाना चाहते थे तो ये पता नहीं क्या बन रहा है, तू क्यों चाह रहे हो बनाना अल्लाह पे छोड़ दो, इंसान का बच्चा बनाने की पूरी फिक्र करो, बस बिगड़े नहीं, बाकी दौलत कमाता है नहीं कमाता, किस रास्ते से कमाता है, ये अल्लाह की तकसीम है। सब दौलत चाहने वालों को दौलत मिलती नहीं है, वरना गरीब दुनिया में खत्म हो जाते, और अल्लाह का वादा है कि गुर्बत हमेशा रहेगी। गरीब खत्म, गुर्बत खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, सारे गरीबों को कंटेनर में बंद करके उड़ा दो मुंह से, फिर गुर्बत खत्म होगी। इसके अलावा गुर्बत खत्म करने का और कोई दुनिया में तरीका नहीं। अच्छा, आप कह सकते हो अमेरिका क्यों इतना मालदार है? भाई हम गरीब है इसलिए वो मालदार है, समझते हो कि नहीं समझते? तो बहुत से बड़े जो दुनिया में मुल्क है ना, वो मालदार ही इसी वजह से हैं कि हमारा खा लिया उन्होंने। अफ्रीका में गया हूं, बहुत सारे मुल्कों में जा चुका हूं अफ्रीका के, अफ्रीका के वो मुल्क जहां डायमंड निकलता है, गोल्ड निकलता है दुनिया का सबसे ज्यादा, वहां लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका गोल्ड बड़ी ताकतें खा रही हैं, तभी तो वो गरीब हैं। तो ये अल्लाह का निजाम है, कुछ खाएंगे, कुछ जुल्म करके खाएंगे तो आखिरत में अल्लाह उनसे पूछेगा। तो ये अजीब ही सिस्टम दुनिया का चल रहा है, ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये वही चल रहा है जो इलेक्शन में सिस्टम चला था हमारे यहाँ, सही है ना? तो दुनिया में भी क्या चल रहा है? सिस्टम। आखिरत में जो चलेगा ना वो सिस्टम होगा, वो सिस्टम नहीं होगा। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अबे यार ये लड़कियों वाले मसले ना पूछा करो मेरे भाई, کہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے راضی ہیں لیکن میرے گھر والے راضی نہیں, میں کیا کروں؟ وہی کرو جو میں نے کیا تھا, کر کے بتاتی تھی کہ شادی ہو گئی ہے, دوسری شادی میں کیا تھا ایسے, گھر والے راضی نہیں تھے تو میں نے بتا دیا تھا ہو گئی ہے, کیا کر سکتے اپنے خرچے پہ. اگر ماں باپ حج پر جائیں اور ان کا بچہ گود کا ہو اور وہ اس کو بھی لے کے جائیں تو اس بچے کا بھی حج ادا ہو جاؤ گا؟ نہیں, نابالغی میں جو حج کیا ہوا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. ایک منٹ یہ مائک میں پوچھیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ تھا کہ پہلی طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ شادی دوسری کب کر سکتی ہے؟
دیکھو, اگر عورت کو پہلی طلاق ہوئی ہے اور عدت کے اندر اندر مرد نے رجوع نہیں کیا, یعنی تین مینسز گزرنے سے پہلے پہلے مرد نے رجوع نہیں کیا, تو تین مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر چاہے تو کہیں اور شادی کرے, چاہے تو پرانے ممبر سے دوبارہ شادی کر لے, لیکن عدت گزرنے سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنے شوہر سے تو کر سکتی ہے, کہیں اور نہیں کر سکتی. جی, اپنے شوہر سے اگر طلاق رجی بائن ہوئی ہے, ایک طلاق بھی اس سے بھی نکاح بعض دفعہ ختم ہوتا ہے. اگر شوہر نے یوں کہہ دیا تمہیں طلاق بائن ہے, یا یوں کہہ دیا تمہارا میرا رشتہ ختم, طلاق کی نیت سے کہہ دیا, تو ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا. تو عدت کے بعد عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے, اور اپنے شوہر سے کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے, عدت کے باہر بھی کر سکتی ہے.
السلام علیکم.
جی بھائی پوچھیں.
مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کھانے میں شراب کا استعمال کرنا,
کیا
کھانے میں شراب کا استعمال کرنا
جائز نہیں ہے بھائی؟
پکانے میں
بھی جائز نہیں.
یا حلال جانور کو جو ہے وہ پلانا میٹ؟
نہیں,
اس کے ٹیسٹ کو
حلال جانور کو بھی حرام چیز نہیں کھلا سکتے نہ پلا سکتے ہیں. یہ بار میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں, لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے لیے باہر سے امپورٹ شدہ گوشت ان کو کھلاتے ہیں جو مردار ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. جانور خود جو مرضی کھاتا رہے, یہ نہیں کہ جانور کو آپ فتوے دینا شروع کریں یہ مری ہوئی مرغی کیوں کھا رہا ہے, تو یہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے, وہ کھانے دیں. لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو خود مردار کھلائیں. لا تنتفعوا من المیتہ, حدیث میں آتا ہے مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی فائدہ اٹھانا ہی اپنے پلے ہوئے جانور کو وہ کھلانا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بڑا فارم ہے مگرمچھ پالے ہوئے, ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے لا کے مگرمچھ کو کھلا دیا. تو میں نے کہا یہ جائز نہیں تھا, مردار تھا, آپ اس کو خود آ کے کھا لیتا. وہ آپ کے لیے اس کو گھسیٹنا کہ اس کے سامنے رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں. ہمیں مردار گوشت سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑا مر گیا, ذبح کر لیتے تو ٹھیک تھا, مرنے سے پہلے ذبح کر لیتے. تو جب خود اپنی موت مر گیا تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کو پھینکنا ہی پڑے گا کچرے میں. پھر کوے خود آ کے کھا جائیں, وہ تو خود ہی کھائیں گے, وہ تھوڑی کوؤں کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم
مفتی صاحب, میرا سوال ہے کہ جمعہ کا خطبہ چیخ چیخ کے دینا جائز ہے؟
چیخ چیخ کے جمعہ کا خطبہ, تقریر جو جمعے کی ہوتی ہے, بہت زیادہ چیخنا تو ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں ممانعت ہے اس سے.
لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو؟
نہیں, صحیح نہیں ہے.
جزاک اللہ.
آپ کی تو ابھی تکلیف کی عمر نہیں ہے ماشاء اللہ, آپ کے بچے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب معلوم کرنا تھا کہ آج کا جو ہے موبائل کے اندر جو گیم جو ہے بچے کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو وہ پیسہ کیا اپنا حلال ہے یا حرام ہے؟
بھائی یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے, بچے گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو اگر پیسے لگا رہے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں اور جو جیت جاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو یہ تو خالص جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر کوئی اور سیٹ اپ ہے کہ وہ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو ایڈ بھی آتے ہیں اس میں, تو اس ایڈ کی وجہ سے کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن بچوں کو منع کریں اس طرح سے پیسے کمانے سے, برباد ہو جائیں گی ان کی زندگیاں. یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے گیموں میں اپنا ٹائم اس طریقے سے ضائع کرنا. جی بھائی پوچھیں. جی قریب کر لیں مائک.
السلام علیکم. مفتی صاحب ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کا تھوڑا سا بتایا تھا, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ جو اسلامک بینکنگ کا آپ نے بتایا تھا, یہ جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے یہ اسی کے متعلق آپ نے تھوڑا سا سمجھایا تھا, اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں.
جی دیکھیں, اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو میں نے بتایا نا, 90% فقہ حنفی سے لی گئی ہے وہ. اب بینکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا حنفیوں کی بینکنگ الگ ہو شافیوں کی الگ ہو, وہ تو ظاہر ہے مرج چاروں فقہ کو مرج کر کے بنائی گئی ہے نا, تو زیادہ تر اس میں کیونکہ فقہ حنفی کے علاوہ ملتے ہی نہیں تھا کہیں, تو اس میں پہلے سے صدیوں پہلے علماء نے اس کی جزیات لکھی ہوئی تھی. باقی فقہ یہ جو بینکنگ ہے اسلامک بینکنگ, اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے, اس کا ماضی یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو بن نوری ٹاؤن کے بانیوں میں سے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب تو اس وقت ذرا ینگ تھے, بالکل جوان تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, مفتی اعظم پاکستان, یہ ان بڑے بڑے علماء نے اسلامک بینکنگ کا ایک اسٹرکچر پیش کیا تھا. کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں جب یہ تحریک چلی ہے کہ پاکستان کو اسلامی کیا جائے, تو یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی آپ ان سودی بینکنگ کا آلٹرنیٹ دو گے تو ہم کچھ کریں گے نا. مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے, پھر اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا کہ یہ ناجائز ہے اور یہ کیا ہے. وہ مفتی صحیح نہیں ہوتا جو بس ناجائز کہہ کے چھوڑ دے. وہ بتایا بھائی یہ ناجائز ہے لیکن اس کا یہ آلٹرنیٹ ہے, اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا جائز. حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سودی لین دین کیا, آپ نے ان کو سخت تنبیہ کی کہ یہ تو حرام ہے, پھر ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے کر لو گے تو کیا ہوگا جائز ہو جائے گا. مشہور حدیث ہے, میں ابھی اس کو بیان نہیں کرتا. ایک منٹ بیٹا میں یہ مکمل کر لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اتنے میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر موقع دیتا ہوں. تو علماء نے نا اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا, اس میں بہت سارے بینکوں کے جو ماہرین تھے ان کو بھی بلایا کہ یہ آلٹرنیٹ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ آلٹرنیٹ تو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ چلے گا ہی نہیں, یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایسا آلٹرنیٹ ان کے مشوروں کے ساتھ کہ وہ سود سے بچا ہوا بھی ہو اور چل بھی جائے. یہاں مثال کے طور پر ایک چیز پہ آ کے اٹک گئے تھے کہ ہم جب قسطوں پہ کسی کو کوئی چیز مہنگی کر کے بیچیں گے تو قسطیں جب ادا نہیں کرے گا, تو اگر ہم عام بینک تو سود لگا دیتا ہے, ہم اگر سود نہیں لگائیں گے تو وہ قسطیں کون دے گا, کون بھیجے گا اس کے پیچھے پولیس, کون پکڑے گا اس کو, کوئی کوڑے ماریں گے, کیا کریں گے. تو سارا سیٹ اپ چار دن بھی بعض دفعہ بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی مسئلے بتا دیتا ہے, پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے, تو کیا کریں گے. اب یہ تینوں فقہ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا, نہ فقہ حنفی میں تھا, نہ مالکی میں, نہ شافی میں. امام مالک کے ہاں اس کا حل مل گیا. امام مالک کے ہاں یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مالی لین دین کرتا ہے یا کوئی بھی لین دین, آپ اس سے مالی جرمانہ یہ التزام کروا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی یا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ پر شرعاً لازم ہے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پروفٹ میں, اتنے پیسے میں کیا کروں گا, صدقہ. تو فقہ مالکیہ سے یہ چیز لی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسطیں نہیں جمع کراتا تو بینک اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ پھر اتنے پیسے چیریٹی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس پہ ہم ڈال دیں چیریٹی کریں گے تو وہ کرے گا, کون کرتا ہے بھائی. تو بینک نے پابند کیا کہ چیریٹی ہمارے ذریعے سے ہوگی, تو یہ جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے فقہ سے یہ چیز لی گئی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے, پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی سود لے رہا ہے, یہ بھی سود, حالانکہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر رہا ہوتا, وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے میزان بینک میں, بینک اسلامی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ یہ سچی مچی میں چیریٹی ہوتا بھی ہے یا ڈرامے بازی ہے, تو پتا چلا کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرسٹوں کو جاتے ہیں, جن میں مدارس کو بھی جاتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے, آپ لیٹ پیمنٹ کرو, یتیموں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو سودی بینک ہیں ان میں لیٹ پیمنٹ سے بینک کا فائدہ ہوتا ہے, غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں, وہ سود ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بینکوں میں لگتا ہے دیکھنے میں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو چھ بنیادی حقوق ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ چلتی ہے, جو شریعت نے آلٹرنیٹ ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. اسلام تبھی تو دین کامل ہے نا, قیامت تک کے لیے آیا ہے. چھ آلٹرنیٹ ہیں, ایک ہے مرابہ, ایک ہے مضاربہ, ایک ہے مشارکہ, ایک ہے سلم, ایک ہے استثناء اور ایک ہے اجارہ. تو یہ چھ حقوق ہیں جو اسلامک بینکنگ میں رائج کیے گئے ہیں سودی سے ہٹا کے, اور یہ چھ کے چھ حقوق بالکل شریعت کے مطابق ہیں. تو یہ چھ حقوق آلٹرنیٹ کے طور پہ نافذ کیے گئے ہیں, اور ہم نے جا کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور ان دنوں میں جا کے دیکھا جب بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتا تھا, اس ایک سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں. اور اس وقت لوگ ہم پہ, ہماری قوم میں نا منفی سوچ بہت ہے. میں نے کہا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, دلائل کے امبار لگائے, اصل میں اپنا چینل ہے نا یار, تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو. بار بار کہہ کے بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتوا دیا ہے, اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بتا, یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ کا, آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو. यही अगर हम हराम कहते हैं ना तो पता है क्या कहना था, अबे असल में इन लोगों को तो हदीये नजराने मिल जाते हैं बैठ के, दूसरों की आमदनी इन्होंने क्या कर दी है, हराम कर दी। किसी हाल में लोग खुश नहीं है, वो गधे वाला लतीफा ही याद आता है। एक आदमी गधे पे बैठा और बच्चा भी गधे पे बैठा, दोनों सफर कर रहे हैं। लोगों ने कहा गधा एक है, बंदे दो सवार हैं, गधे पे जुल्म कर रहे हैं। उसने कहा चल बच्चा तू उतर जा, मैं बैठता हूं। खुद बैठ गया, बच्चा उतर गया। लोगों ने कहा बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, छोटा बच्चा है बिठाना उसको चाहिए, कमजोर है, खुद तो ताकतवर है, जवान आदमी है, लेकिन चूंकि बाप है तो बाप होने का नाजायज फायदा। इसने बच्चे को बिठा दिया, खुद उतर गया। लोगों ने कहा अभी से बदतमीज बना रहा है बच्चे को, बच्चे को गधे पे बिठाया हुआ है और बाप गधे की लगाम लेके चल रहा है आगे, तो इसका मतलब ये तो बच्चे को अभी से फिरौन बना रहा है, बाप की तमीज ही खत्म हो जाएगी। इसने क्या किया, इसने खुद दोनों उतर गए, गधा खाली। उन्होंने कहा दुनिया में देखने में गधा ये लग रहा है, हकीकत में गधे ये हैं, क्योंकि सवारी मौजूद है और फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो उसने उठा के ना दरिया में फेंक दिया गधा। ये आखिरी काम गलत किया, ये बिल्कुल गधों वाला काम किया उसने। तो पब्लिक की बातों में आके किया ना, बाकी जितने भी काम किए सबकी कोई ना कोई लॉजिक बनती थी, ये आखिरी काम क्या किया है, बिल्कुल गलत। तो अगर हम पब्लिक के दबाव में आके हलाल को हराम या हराम को हलाल कह देना, ये गधों वाला काम होगा, ये बिल्कुल नाजायज होगा। इसलिए YouTube की अर्निंग हलाल है या हराम है, जो हमें समझ में आएगा वो हम फतवा देंगे, पब्लिक के दबाव से मुतासिर नहीं होंगे। हम जब ये सूदी बैंक थे ना, इनकी आमदन को हराम कहते थे, उस वक्त लोग हमसे इस पे बड़ी बहस करते थे, अबे तुम्हारे अपने बैंक नहीं है ना इसलिए हराम कहते। मैनेजर की तनख्वाह को हम हराम कहते थे, अब भी कहते हैं। मेरे यहां मस्जिद में बयान हुए, कितने बैंकर्स मुझसे नाराज हो गए, यार ये क्या है, ये क्या है। फिर जब इस्लामिक बैंकिंग आई, हमने कहा अब ये ठीक है, इसमें आ जाओ। तो पहले हम जो खालिस सूदी बैंक है उनको हराम कहते थे, उस पर भी पब्लिक को इतराज होता था इसी मस्जिद में कि भाई ये तो पूरी दुनिया सूद पे चल रही है, पूरी दुनिया का निजाम, ये हराम कैसे हो गया। फिर हमने कहा चलो अब इस्लामिक बैंकिंग आ गई, हम लोगों को अल्टरनेट बताएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, यार जिंदाबाद हमारे लिए रास्ता निकल आया। हमने कहा अब कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है, असल में इन मौलवियों के अपने अकाउंट खुले में, मेरा तो नहीं खुला हुआ था भाई, उस जब हमने हलाल किया तो मेरी पगड़ी देख के ना मिजान बैंक ने मुझे भगा दिया था, तालिबान आ गए हैं। उन्होंने बोला ये तो खतरनाक हो कि दहशतगर्द ना हो, इस तरह की बातें करते थे हमारे बारे में। हम कह रहे थे लो भाई हम इनके जायज होने के फतवे दे रहे हैं, हमारे वो क्लिप मिलियंस में गया है जिसके बाद लोगों ने बैंकों में अकाउंट खोले हैं, तो उससे भी खुश नहीं थे। तो YouTube को अगर मैं कह देता ना हराम है, चीखें निकल जाती तुम लोगों की, जो लाखों लोग कमा रहे हैं ना, और उन्होंने भी हमारी गत बनानी थी, अब ये इन मौलवियों के चक्करों में पकड़ो, हमने हलाल कह दिया तो भी चीखें निकल रही हैं, तो भी क्या निकल रही हैं। तो इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि पब्लिक की बातों में आओगे तो वो गधे वाला किस्सा होगा तुम्हारे साथ। तो पब्लिक को मत देखो जो खोपड़ी में आ रहा है, बच्चे को गधे में बिठाना है बच्चे को बिठा दो, खुद बैठना है खुद बैठ जाओ, दोनों को बैठ रहे हैं दोनों, एतराज होगा तो गधे को होना चाहिए। गधे को जब एतराज नहीं हो रहा, वो दोनों को लेके घूम रहा है, तो फिर पब्लिक को एतराज, पब्लिक के एतराज से क्यों जाते हो। तो इसलिए जो सही मुफ्ती होगा वो लोगों को नहीं देखेगा पब्लिक क्या कह रही है, वो तमाम दलाइल में गौर करके एक राय कायम करेगा। तो वो चाहे, अब लोग मुझसे पूछते हैं आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं, मैं कहता हूं भाई आमदन अगर हराम है तो मेरे चैनल के मोनेटाइज होने से वो हलाल नहीं हो जाएगी, और अगर हराम है तो मेरे डीमोनेटाइज होने से वो हलाल, मेरे अमल से हलाल हराम नहीं होगा ना हराम हलाल होगा। तो हमारे अमल को क्यों देखते हो भाई कि कौन क्या कर रहा है। हाँ ये भाई काफी देर से बेचारे इंतजार कर रहे
हैं। मेरा सवाल ये है कि मियां बीवी का जो रिश्ता होता है निकाह का, तो उनमें से अगर किसी एक का भी इंतकाल हो जाए तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है
जी,
और अगर नहीं,
दुनिया के लिहाज से खत्म होता है, देखो आखिरत के लिहाज से खत्म नहीं होता। यहाँ भी लोग दो चीजों को खत्म करते हैं, मियां बीवी में से एक की भी डेथ हो गई ना तो दुनिया के लिहाज से रिश्ता खत्म, आखिरत के लिहाज से नहीं होता। आखिरत में मिलेंगे एक दूसरे, तभी उनके लिए दुआएं भी मांगनी चाहिए। हाँ दुनिया के लिहाज से खत्म होता है, इसकी दलील यही है कि अगर आपकी बीवी मर जाए तो आप उसकी बहन से शादी कर सकते हो, अगर रिश्ता खत्म ना होता तो उसकी बहन से शादी हलाल थोड़ी होती, आप तो तभी तो इजाजत है उसको। इसी तरह आप मर गए तो इद्दत के बाद बीवी भी कहीं और निकाह कर सकती है, अगर वो दुनिया के लिहाज से रिश्ता बाकी है तो क्यों कर सकती है भाई, वो आप तो कब्र में उसके मियां हो आप, ठीक है ना। तो दुनिया के लिहाज से, दुनियावी हकाम के लिहाज से खत्म हो जाता है, आखिरत के हकाम से बाकी रहता है।
अच्छा,
लेकिन औरत अगर कहीं और शादी कर लेना तो फिर आखिरी आखिरत के हकाम में भी वो रिश्ता खत्म हो जाता है, औरत को आखिरत में आखिरी वाला एंड वाला मियां मिलेगा, एंड में जो उसके साथ था इरशाद।
दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या सोने से जो है वो वजू टूट जाता है, जैसे अगर हमारी ओंग आ गई, बैठे बैठे आंख लग गई हमारी, या हम काफी देर के लिए भी अगर सो गए तो उससे क्या हमारा वजू टूट जाएगा।
बैठे बैठे आंख लगने से वजू नहीं टूटता, लेट के सोने से वजू टूटता है, या آپ سجدے میں ایسے کہ بالکل ہی بچ گئے زمین پہ تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا, جیسے ہوتا ہے نا سجدے میں سوتے سوتے بالکل ہی بچ گئے. مرد جس طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ پورا زمین پہ بچھے نہیں ہوتے آپ. تو خواتین جس طرح سجدہ کرتی ہیں نا سمٹ کے, ان کی اگر سجدے میں آنکھ لگ گئی تو کیونکہ وہ پوری گہری نیند ہوتی ہے پھر وہ. تو صحابہ کرام جب نبی کی نماز میں آتے تھے نا عشاء کی نماز میں, تو عشاء بہت دیر سے ہوتی تھی, تو صفوں میں اونگ رہے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آواز لگائی, نامت النساء والصبیان, عورتیں بچے سو گئے ہیں. تو نبی نے ان کو دوبارہ وضو کا حکم نہیں دیا کیونکہ بیٹھے بیٹھے سوئے تھے صف میں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ بیٹھے بیٹھے دونوں تشریفیں آپ کی زمین پہ ٹکی بھی ہوں اور آپ کو کی آنکھ لگ جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ سو رہے ہو اور ایک جانب آپ لڑک گئے, ایک تشریف, پیار سے میں تشریف کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہوں, سے تشریف زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا, سمجھتے ہو.
ایک آخری سوال ہوتا ہے, وہ بس یہ پوچھنا تھا کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ جو چھ کلمے ہیں ان میں سے چار ثابت ہیں, تو لیکن ہم لوگ کو سب بچوں کو آسان نماز میں جو ہے بچپن سے وہ چھ کلمے جو ہے یاد کروائے.
دیکھو یہ چھ کلموں کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہیں, دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو ان کلموں میں دعا پڑی جاتی ہیں, نمبر ثابت نہیں ہے. نمبر کسی نے آسانی کے لیے لگا دیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. اب کلمہ شہادت کو دوسرا کلمہ کہہ دیا تو کیا جا رہا ہے اس میں, حدیث میں نہیں ہے کہ یہ دوسرا کلمہ نہ پہلا کلمہ. بعض چیزیں تعلیم کے لیے ہوتی ہیں, جب تعلیم دینے کے لیے نا, یاد کرانے کے لیے, جیسے تبلیغ والوں نے کہا دیا چھ نمبر, ابھی چھ نمبر حدیث سے تھوڑی ثابت ہیں, لیکن ان نمبروں میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے نا, تو یاد کرانے کے لیے ان کو ایک لسٹ دے دی ہے. تو تعلیم کے لیے کسی کو بھی کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ارشاد نہیں, خطبے کے دوران چندہ حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. خطبے کے دوران کوئی موومنٹ کوئی حرکت جائز نہیں ہے, چندہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں ہو رہا ہوتا ہے نہیں, غلط ہو ان کو منع کریں, بیٹھے بیٹھے پوچھ لیں, کوئی کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کافی عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو.
جزاک اللہ.
میں نے ریکویسٹ بھی کی آپ سے, آپ دو منٹ ٹائم دیجیے گا ہمیں بھی.
جی
اوکے. میرا سوال یہ ہے کہ سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر کیا وہ جائز ہے؟
سگریٹ
سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر کیا اس کی کمائی سے بندہ نیک کام بھی کر سکتا ہے, جیسے مدارس کو چلانا, مساجد کو بنانا, یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, کیا اس کی کمائی حلال ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ.
سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے, کیونکہ سگریٹ کا جو تمباکو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ, لیکن فوری اور یقینی نقصان نہیں ہوتا, اس کا ٹائم لگتا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں لیکن لانگ ٹائم میں جا کے. تو اس لیے حرام کا جو جتنی حرام ہوگی تو اس کا درجہ اتنا ہی ہے. تو اب ایک خودکشی یہ ہوتی ہے آپ کھمبے سے لے جا سے چپک گئے, وہ تو 100% حرام ہے. ایک خودکشی یہ ہوتی ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ پھر بھی مٹھائی سے پرہیز نہیں کر رہے, تو اس کو وہ حرام تھوڑی کہا جائے گا جو کھمبے سے چپکنے والے کو کہا جائے گا, اس کو یہ کہا جائے گا مکروہ ناپسندیدہ. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتا ہے مزید ایک نوالہ کھاؤں گا صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, یہ نوالہ بھی حرام ہے. لیکن یہ حرام اس درجے میں نہیں ہے, کراہت ہے, ناپسندیدہ کے درجے میں مکروہ ہے. تو ایسے ہی سگریٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کی آمدن بھی ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ہماری رائے یہی ہے اس بارے میں. چرس کی آمدن حرام ہے, ہیروئن کی آمدن کیا ہے؟ حرام. تو چرس اور سگریٹ میں کوئی فرق تو ہوگا نا, ہیروئن اور سگریٹ. تو اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ سگریٹ کا کام نہ کرو آپ. باقی کوئی کر رہا ہے تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا, ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا. حدیث میں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے لیکن پھر بھی نبی نے اس کو حرام نہیں سمجھا. جیسے حجامہ, یہ جو خون نہیں نکالتے, اس کی اجرت کو نبی نے پسند نہیں کیا لیکن آپ نے اس کی اجرت دی ہے. پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ کام ہر وقت جو حجامہ کرنے والا, آپ دیکھو لوگوں کی قمیضیں اتار کے بیٹھا ہوا ہوگا, کپ لگا کے خون نکال رہے, گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے. ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک سلیم الطبع آدمی کو اچھا نہیں لگتا. کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, آپ کیا کرتے ہو؟ لڑکی والے پوچھے میں حجامہ کرتا ہوں, ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا قمیضیں اتار اتار کے لوگوں کے کیا لگاتا ہے. ایک تو ڈاکٹر کبھی کبھار یہ کام کر رہا ہوں نا, کرتا ہی یہی ہے, کپ لگا لگا کے خون نکالتا ہے, پھر بلیڈیں لگاتا ہے, پھر دوسرے کی قمیض اتارے گا, خون نکالے گا. اور آسان, بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لوگوں کی؟ بولو نا, لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا بھائی, اس میں ناجائز والی کوئی سطر میں تھوڑی داخل ہے. اب آپ نے ادارہ کھول لیا, دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی, کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل آمدن حلال ہے, لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ कहीं रिश्ता लेने के लिए गए, आपका बेटा क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टमाटर बेचता है, ठीक है, अच्छी बात, बगलें साफ करता है लोगों की, एकदम जहन में क्या आएगा, अबे यार हर वक्त घुसा रहता होगा अंदर लोगों की ना, गंद में घुसा रहता होगा। तो ऐसे ही जो हर वक्त हिजामा ही को पेशा बनाते हैं, तो नबी ने इस अमल को पसंद नहीं किया, इसकी उजरत को सहत करार दिया है, लेकिन फिर भी जिसने नबी का हिजामा किया आपने उनको उजरत दी है। तो कुछ चीजें हराम नहीं होती लेकिन वो काबिल तारीफ नहीं होती। और आसान मिसाल देखो, लोगों के गटर साफ करने वाले की कमाई जायज है या नहीं है? अब आप बन जाओ, मैं लोगों के गटर साफ करूंगा जी, कमाऊंगा, ठीक है भाई, जायज है। लेकिन कोई आपसे मशवरा लेगा तो लोग क्या कहेंगे, यार कोई और काम क्यों अपने आप को लोगों के सामने इतना रुसवा कर रहा है कि उनकी गंदगी तू उठा रहा है? अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इज्जतदार बनाया, तो काम भी कौन से करो इज्जत वाले। मैं जब यहां आया ना तो किसी ने मुझे कहा हमारे यहां मुर्दा नहला दो, मैंने कहा मैं मुर्दे नहलाने का काम नहीं करता, मैं मुर्दे नहलाने का काम, मैंने सिर्फ अपने वालिद को गुसल दूंगा, अपने करीबी कोई रिलेटिव होगा उसको गुसल दूंगा, या अपना दोस्त होगा ना जिगरी, उसके बाप को मैं दोस्ती यारी में गुसल दे दूंगा, मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा। जायज है, मैं ये नहीं कह रहा जो मुर्दों को गुसल देते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन भाई मैंने कहा मैं अपने आप को क्यों, अल्लाह ने मुझे टूटी फूटी इज्जत दी, मैं अच्छे खानदान में पैदा किया, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अमाल इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को लोगों में क्यों जलील करूं भाई, मैं अपनी अपनी वैल्यू लोगों की नजरों में क्यों गिराऊं? मुर्दे नहला लहला के जो मुर्दा हो रहा है, तो एक मौली साहब से मैंने ये कह दिया भाई मैं ये काम नहीं करता, वो गुस्से हो गए, कह रहे ये सवाब नहीं है मुर्दे नहलाना। मैंने कहा सवाब है, तो जिसका बाप मरा है उसके बेटे के लिए सवाब है ये? कह रहे नहीं, ये तो इंसानियत की खिदमत है। मैंने कहा भाई इंसानियत की खिदमत तो ये भी है कि फिर आप लोगों के गूं भी उठाओ जाके, किसी का गटर बंद हो जाता है आप जाके साफ करो। कहते हैं आपको तो वो आता नहीं। मैंने कहा मैं सीख भी भंगियों से सीख सकता हूं मैं ये काम, मैं क्यों मुर्दे नहलाऊं भाई लोगों के लिए जाके? उन्होंने कहा नहीं, ये सुन्नत तरीके के मुताबिक लोगों को नहलाना आता नहीं है, इसलिए आप नहलाएं। तो मैंने कहा सुन्नत तरीके के मुताबिक नहलाना आता नहीं है तो मैं नहलाना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। कोई मेरे पास आए कि मैंने मुर्दा नहलाना है, सुन्नत तरीका क्या है, मैं उसको बता दूंगा, ये मेरा काम है, नहलाना मेरा काम नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप पे गुसल फर्ज हुआ, आपकी शादी थी, सुबह आपने गुसल करना था, रुखसती हो गई, अब सुबह आपने गुसल करना है। अब आपको गुसल फर्ज कैसे किया जाता है आपको आता नहीं है, आप मुझे फोन करके फर्ज गुसल का तरीका पूछोगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये मेरी शरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपको आके मुझे नहला भी दें तो मैं नहलाऊंगा आपको, आप 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना, तो सब सुन्नत के मुताबिक मुझे नहला दें और मैंने यहां से यहां तक वो बांधा हुआ है, 70 नजर नहीं आएगा, मैं फिर भी नहीं नहलाऊंगा, चाहे 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दो, मैं कहूंगा भाई मेरी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी, आज उसको नहलाने जा रहा हूं आज उसको। तो ऐसे ही जब मर जाएगा तो मैं क्यों नहलाऊं भाई, उसकी औलाद है वो नहलाए ना उसको, अगर उसको सुन्नत तरीका नहीं आता तो सुन्नत तरीका बता दूंगा मैं। तो ये मुर्दे नहलाना, अब उलमा बाज ये काम कर रहे होते हैं भाई, ये इल्म वालों पे सूट नहीं करते। आप अपनी देखो, इंसान इस्लाम में सबसे पहले जान की हिफाजत, उसके बाद सबसे पहले इज्जत की हिफाजत है, माल उसके बाद है, उसके बाद माल की हिफाजत है, हिफ्ज़े जान और नामूस यानी इज्जत की हिफाजत, और उसके बाद माल की हिफाजत है, इज्जत पहले है पैसा बाद में है। तो इसलिए वो चीजों को पेशा मत बनाओ जिनमें इंसान की इज्जत खत्म होती है, तो वो नहीं बनाने चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए वो काम इंसान को। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें इज्जत जाती नहीं है, लेकिन बेवकूफ लोग समझते हैं कि इज्जत नहीं हो रही, वो तो फिर बेवकूफों के तो मैयार ही अलग होते हैं ना। अब जो ठेला लगा रहे हैं टमाटर बेच रहे हैं, ये कोई तौहीन का काम नहीं है, बिजनेस कर रहा है अपना ठेला अपना, उसमें अगर उसको कोई हकारत से देखता है तो देखने वाला बुरा है, लेकिन गंदगियां साफ करना लोगों की, तो ये काम मजबूरी में किसी बेचारे का कोई रिस्क नहीं है, वो तो एक मजबूर है। भीख मांगने से अच्छा है, मैं भंगियों को बुरी नीयत से नहीं देखता, भीख मांगने से अच्छा है कि गटर साफ करके कमा लेते हैं, भीख मांगने से करोड़ा गुना बेहतर है। अब हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा जायज जरिया है कमाने का तो भाई मुर्दे को आप मत नहलाओ, इसको आमदन और पेशा मत बनाओ। मैं तलबा को भी मना करता हूं। अच्छा बात से बात निकलती है, एक तालिबे इल्म को मैंने पूछा बेटा तुम्हारी जरिए आमदन क्या है? कह रहा मैं शादी कर रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारी जरिए आमदन क्या है? कह रहे मेरी जरिए आमदन क्या है? मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेचता हूं। मत करो। कह रहे ये क्या बात हुई यार, ये तो जायज है। मैंने कहा जायज है, तालिब इल्म पे ये काम सूट नहीं करता। फिर मैंने अपने मैंने कहा मेरे तो 4 शादियां हैं ना, कितने लोगों ने मर्दाना कुव्वत के सिलसिले में मुझसे राब्ता किया होगा, आपकी सोच है? मैं अगर ये बिजनेस करना चाहता खरबपति होता मैं, समझ रहे हो, खरबपति होता मैं। मैंने कहा मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन ये छाप ही गलत है यार, हम क्या बेच रहे हैं लोगों को मरदाना। मैंने कहा ये हमारे जो इल्म की तरफ हमारी निस्बत है, हम कोई इज्जतदार नहीं है, हमारे यहाँ अमाल क्या है हमें पता है, लेकिन इल्म की तरफ जो हमारी निस्बत है उस निस्बत को हमने बचा के रखना है, कोई ऐसा काम नहीं। मैंने कहा मैं शहद का मैंने बिजनेस किया बहुत तवील अरसे तक, मुझे एक नंबर खालिस सलाजीत जो बहुत ही खालिस एक नंबर होती है, पूरे बोरे भर के किसी ने लाके दी कि आप बेचो। मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि सलाजीत लोग समझते हैं किस काम के लिए, मर्दाना कुव्वत के लिए, हालांकि उसके और बहुत सारे फायदे होंगे। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा। मैंने पूरे बोरा उठा के किसी यकीम को पकड़ा दिया, मैंने कहा भाई ये तुम जानो तो मैं नहीं ये काम करूंगा, क्योंकि और उस वक्त मेरी आमदन बहुत कम थी, वो मैं बिजनेस करता तो करोड़ों रुपए कमाता, और मैंने देखा है लोग कमा रहे हैं, तो मैं ये नुस्खे बताना शुरू कर दूं इसकी आमदन और ये माजूने बेचना शुरू कर दूं, और लोग आते थे आपके पास खालिस सलाजीत मिलेगी? मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास, कह रहे हैं आपकी इतनी शादियां फिर कैसे हैं? मैंने कहा रोटी पराठे से चल रहा हूं भाई मैं, हमने अपने आप को रोटी और पराठे पे क्या कर लिया है, सेट कर लिया। तो मैं ये दवाएं बेचना चाहता, बहुत बेच के बहुत कुछ, मेरे डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, हकीमों से ताल्लुकात हैं, साइंसदानों से ताल्लुकात हैं, पायलटों से हैं, फौजियों से हैं, पुलिसियों, एक मशहूर आदमी के हरेक से होते हैं, मैं तो दबा के मंजन। लेकिन मैंने कहा ये इज्जत वाला काम नहीं है। तभी जो दो नंबर हकीम होते हैं ना, जिनको आता पाता कुछ नहीं है, उनके बोर्डों पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मर्दाना ताकत एक रात में, जो समझदार हकीम होते हैं उनके बोर्ड पे आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी, उनको पता है यार अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो, तमीज से जो हिकमत का काम है वो करो। लेकिन जो दो नंबर हकीम होते हैं, किबला बड़े हकीम साहब, और फिर एक रात में मर्दाना कुव्वत बहाल और फिर ड्रामेबाजी। तो खैर मैंने उस तालिम से कहा, मैंने कहा ये काम मत करो, कह रहे भाई लोग आते हैं मैं उनको फला हकीम से मेरा ताल्लुक है, दवाएं बेचता हूं इतना पैसा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इज्जत और पैसे में दो चीजें हैं तो तरजीह किसको देनी है। मैंने कहा ये किसी और को करने दो, तालिब इल्म पे ये चीज सूट, कल आलिम बनोगे क्या लोग कहेंगे, ये वो मौलाना है जिन्होंने इतना बड़ा बंगला बना लिया मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेच के, ये क्या इज्जत रहेगी यार। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरी नजर में आपकी दो टके की इज्जत नहीं होगी, तो इसलिए काम हमेशा कौन सा करना चाहिए मेरे भाई, इज्जत वाला काम जो शरीफों पे सूट करता है, समझते हो, टमाटर बेचो आलू बेचो ये शरीफों के काम है, ये नुस्खे बेच रहा है ये बुड्ढों को जवान करने के, ये ठीक नहीं है। अच्छा मेरे भाई, रायमंड से जमात आई हुई है मेरे भाई, आप लोग आए हुए हैं अभी तो मिल लिए ना इतना माशाल्लाह, अभी थोड़ा ठीक है मिलते हैं दोबारा। और कोई भाई सवाल, बस आखिरी सवाल ले लेते हैं, बस ये आखिरी सवाल। अच्छा चलो उनको पहले पूछने दो जी, फिर आपका लास्ट, बस फिर छुट्टी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अच्छा ये जो आजकल आ रहे हैं डिजिटल बैंक आ रहे हैं,
क्या आ रहे हैं
डिजिटल बैंक आ रहे हैं, जैस कैश है, हाँ है, इनकी बेसिकली जो अर्निंग है ना वो होती है ज्यादातर होती है फी कलेक्शन से।
किससे?
फी कलेक्शन, जैसे
माइक करीब करें ना,
जैसे आपने ट्रांजेक्शन की है ना तो आपसे एक फीस चार्ज करेंगे, सूद नहीं होगा वो एक फीस होगी, ठीक है। अच्छा लेकिन ये लिंक होते हैं किसी भी बैंक से, जैसे जैस कैश है मोबाइल बैंक से लिंक है, वो चल रहा है कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर, वो इस्लामिक नहीं है, तो इस उसके ऊपर क्या आपका वो?
नहीं देखें वो उनका जाती अमल है,
नहीं
आप देखो वो जो जैस कैश वगैरह जो ट्रांजेक्शन पे कमीशन काटते हैं वो जायज है, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको, आपका पैसा इधर से उधर। ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी को 50 रुपए दूं, यार वसीम को देकर आ जा इस बात के मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, तो ट्रांजेक्शन की फीस जायज है। बाकी जैस कैश या मोबिलिंक वगैरह का जो सूदी बैंकों से उनके अकाउंट खुले हुए वो उनका, उसका आपसे कोई लेन देन नहीं है। आप कंपनी की ब्रेड खरीदते हो, उस कंपनी ने बैंक से कर्जा लेके वो कंपनी बनाई है, तो आपके लिए ब्रेड खरीदना या उसको लेन देन या उसमें जॉब करना नाजायज नहीं होगा इससे।
यानी कि जो आप जो मैं आपके पास समझाऊं, अगर जैस कैश में वो जॉब कर रहा है और उसकी अर्निंग उसको सैलरी मोबिलिंग बैंक की अर्निंग से नहीं हो रही, जैस कैश की अर्निंग से हो रही है
जी,
तो वो सही कर
हाँ, जायज है, जायज।
वो जायज है
जी।
अच्छा और इसी तरह अगर इन केस क्योंकि दोनों का मर्जर बेसिकली है ना, जैस कैश हो गया या ये क्या नाम तामीर माइक्रो फाइनेंस हो गया
करीब,
इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो कन्वेंशनल बैंकिंग से अर्निंग आ रही है वो गलत है?
जो सैलरी कहाँ से आ रही है इससे ताल्लुक नहीं है,
अच्छा
बैंक से आ रही है या जैस कैश कंपनी खुद दे रही है, इससे है कि काम क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि सबकी तनख्वाहें आजकल बैंकों से होके ही आती हैं, तो बैंक थोड़ी दे रहा होता है, वो तो कंपनी दे रही होती है लेकिन कंपनी ने आपका अकाउंट बैंक में खोल दिया होता है, तो वो इस वजह से बैंक से आ रही होती है। हाँ डायरेक्ट बैंक आपको दे रहा है उन सर्विस के थ्रू जो आप बैंक को दे रहे हैं और वो सर्विसेज नाजायज हैं, तो वो फिर नाजायज होगी तनख्वाह आपकी, क्योंकि वो आपको नाजायज काम के बदले में मिल रही है। जी भाई,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मुफ्ती साहब, सवाल ये पूछना था कि हम इस मुल्क के बारे में करें क्या, यानी अगर आप बोलते हैं कि हम टिया वगैरह लगा दें, तो टिया वगैरह लगा दें तो पुलिस वाले हमें तंग करते हैं, और बाहर निकले तो रोड की हालत ऐसी है कि बाइक अगर बाइकें भी चलाएं तो उसमें टायर पंचर और बाद मसाइल आ जाते हैं।
जी,
तो हमें करना क्या चाहिए, मैं भाग जाना चाहिए या फिर हमें यहाँ रह के काम करना चाहिए सही तरीके से? दो नंबर का
मेरे भाई, मुल्क में हालात ऐसे चल रहे हैं, मुल्क से भाग जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? भाग के कहाँ जाओगे, तो वहाँ कौन से अच्छे हालात चल रहे हैं? अभी लंदन के हालात पता है आपको, लंदन से लोग भाग भाग के अमेरिका कनाडा जा रहे हैं, बहुत महंगाई हुई यूके में। और दूसरी बात, मैं कनाडा यूके गया हूँ, सॉरी अमेरिका और कनाडा गया हूँ, तो वहाँ जो महंगाई है वो यहाँ से ज्यादा है। आप हैरान होंगे कि यार कैसे कह रहे, वहाँ जितनी जो आपकी तनख्वाह डॉलर में है ना, तो एक्सपेंसेस भी आपके किस में है, वो डॉलर में। तो वहाँ कमाने का फायदा उनको होता है, जो कमाए वहाँ खाए यहाँ, तो रहना आपको फिर भी इधर ही पड़ेगा। तो भाग के आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? दूसरी बात, एक पाकिस्तान के हालात उम्मीद है चंद सालों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक होने की तरफ मोड़ा जा रहा है इसको, तो टाइम लगेगा, उम्मीद है, बातें उम्मीद की करनी चाहिए। हो सकता है 10 साल के बाद फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले 10 साल में हमें उम्मीद है कि मुल्क के हालात बिल्कुल, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुल्क काफी हद तक, देखो डॉलर 75 से आगे बढ़ नहीं रहा है, 275 से। अब मैंने किसी को कहा, यार एक अच्छी बात है कि डॉलर को 275 पे रोक लिया, अब ये साफ ड्रामा है। मैंने कहा कोई अच्छी बात सुन के खुश होने की तरफ पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, तो हम लोग कुछ बहुत ज्यादा ही नेगेटिव में चले गए हैं। कुछ मुल्क में अभी भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन कुछ सही भी हो रहा है। बाकी प्रॉपर्टी जो धड़ाम से नीचे गिरी हुई है ना, प्रॉपर्टी का उसूल है, आप किसी भी, मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा, आपको मुफ्ती साहब आपकी ये फील्ड नहीं, आपको क्या पता, जो प्रॉपर्टी के चोटी के लोग हैं ना पाकिस्तान में, मेरी उनसे भी सलाम दुआ है। प्रॉपर्टी का उसूल है कि जब जाती है तो धड़ाम से, जब ऊपर जाना शुरू होती है तो पकड़ाई में नहीं आती। तो ये किसी हद तक ये नेचुरल है, क्योंकि लोगों ने इतना प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है कि उसने नीचे जाना ही होता है। अब खरीदने वाले हैं नहीं, बेचने वाला कह रहे हैं मैं कम कीमत पे कैसे बेचूं, लेकिन एक हद तक होगा ये, उसके बाद बेचने वाला बेजार होगा, और खरीदने वालों को भी, अब नस्ल तो बढ़ रही है ना, जरूरत पड़ेगी तो वो फिर एकदम धड़ाम से एकदम ऊपर जाना शुरू होगी। तो ये हमेशा होता रहा है, मुल्क की हालात कभी नीचे कभी ऊपर, ये चलता रहेगा। और 25 साल से हम क्या 30 साल से ये सुन रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, उसी में शादियां भी हो रही हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर भी लोग बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। बाहर मुल्कों में मैंने देखा इतने पाकिस्तानी इतना यहां ही से पढ़ लिख के गए हुए हैं, तो खराब भी रहेंगे सही भी रहेंगे। आप लाइफ को एंजॉय करना सीखो, एक उसूल याद रखो, मौलवी खान भी कहा करते थे रहिमहुल्लाह ताला, जो चीज अपने इख्तियार में नहीं है टेंशन ना लो, जो इख्तियार में छोड़ो नहीं उसको। मुल्की हालात की टेंशन लेके क्या ठीक हो जाएंगे हालात? मेरे और आपके नहीं है जी, बड़े भाइयों के हाथ में है सब कुछ, बुजुर्गों के हाथ में है सब कुछ, तो हमने क्या करना है यार इसे? तो जिनके हाथ में है वो उनका हेडिक है, वो हमारे हाथ में होते तो हम उनको ठीक कर देते, यूं पढ़ के घुमा लेते। अभी मैंने बयान में कहा ना, इलेक्शन में सिस्टम चला है, सिस्टम चला है, सिस्टम चला है, तो हमने ठीक कर लिया उसको, हमारी मर्जी के हो गए इलेक्शन, पहले कभी हुए आइंदा कभी होंगे। अब मैं टेंशन लूं क्या हो रहा है इलेक्शन में यार, ये क्या हो रहा है? तो मेरे टेंशन से मेरा ब्रेन हैमरेज होगा, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मुझे कब्ज हो जाएगा, मुझे शुगर हो जाएगी, इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। मुझे वो करना है जो मेरी खोपड़ी में आ रहा है, जो मेरे इख्तियार में। एक तो मायूसी में जो अच्छी बातें उनको भी सोचना है, सारी बातें, जैसे एक अच्छी बात मैंने बता दी, डॉलर 275 पे अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया है, एक अच्छी बात है। कनाडा का डॉलर तो नीचे गया है, वो तो सस्ता हो गया, कनाडा का डॉलर जब मैं था वहां 205 रुपए चल रहा था, अभी 200 पे आ गया, हमने कहा लो भी 5 रुपए नीचे आ गया। तो ऐसी कहीं से भी कोई हल्की सी अच्छी खबर मिले, एकदम इंजॉय करना शुरू कर दो उसको, ठीक सोच के, थोड़ा सा मौका मिलेगा ना। जेल में जो कैदी होते हैं ना, किसी ने मुझे बताया कि हम बहुत टेंशन में रहते थे, कोई हल्का सा लतीफा सुनाता था हम बहुत जोर से कह के लगा के हंसते थे, कि थोड़ा सा इंजॉय करने का मौका मिला है तो फुल इंजॉय करें इसको। तो अगर कहीं से इतनी सी अच्छी खबर आ जाए ना, डॉलर 275 था, अब हो सकता है कल 278 हो जाए, तो आपको सिर्फ 3 रुपए बढ़ा है, सिर्फ 3। मैं फिलहाल यही पैकेज आपके सामने पेश कर सकता हूं, के अलावा मेरे पास और कोई पैकेज नहीं। तबलीग में जुड़ जाओ टेंशन भूल जाओगे। वो कहते हैं या तो जमीन के नीचे की बात करो या आसमान के ऊपर की, उनको डॉलर से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा
जी साहब, वो जैसे वो बैंकिंग की बात हो रही थी उसी में एक दो बातें और थी
जी,
कि जैसे लोग ये कहते हैं कि जी वो भंडोरी टाउन वाले कहते हैं कि नाजायज है और तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि जायज है
जी,
ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने चैनल पे आप ये कहते हैं कि भंडोरी टाउन वाले भी हमारे हैं
जी 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 जी
और मुफ्ती साहब भी हमारे हैं, लेकिन भंडोरी टाउन वाले साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आप तकी उस्मानी साहब को हमसे बेहतर समझते हैं तो आप उस पर अमल कर लें तो आपको गुना नहीं होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि एक आलिम दोस्त ने हमसे ये कहा कि जो लोग कहते हैं कान यहाँ से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो, एक ही बात है, ऐसा नहीं है। बोला कि तकी उस्मानी साहब के इस अमल के ऊपर एतराज वो कर सकता है कि जो तकी उस्मानी साहब से ज्यादा इल्म रखता हो, जो कि है नहीं, या कम से कम बराबर इल्म रखता हो, वो भी नहीं है। तो जो नीचे इल्म रखने वाले हैं वो एतराज करने की जरूरत कैसे करते हैं। और एक दूसरी बात ये थी जो आपने कहा कि वो वुजू के क्या है वो गुस्ल के फराइज आगे मुफ्ती साहब से पूछ लिया करें, तो मेरा आपसे भी ये कहना है और अपने तवस्सुल से तमाम आइम्मा से आप ये कह दें कि आप ये इंतजार न करें कि कोई आपसे गुस्ल के फराइज आगे पूछे, आप अपने बयानात के अंदर गुस्ल के फराइज बताएं, क्योंकि मेरा तजुर्बा यह है कि 80% लोग उम्रे पे और हज पे जाते हैं, उनको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम। और तबलीग वाले कहते हैं कि जब इंसान नापाक हो जाता है तो उसको अपनी मस्जिद में नहीं रहना चाहिए, तो वो हरम कैसे जा रहा है।
हाँ भाई ने, रफी भाई ने जो बातें की, एक भंडोरी टाउन ने इस्लामी बैंकिंग को नाजायज समझते हैं, तो भाई वो भी उलमा लोग हैं, अहले हक उलमा में से हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मुफ्ती तकी साहब के फतवे पर एतमाद है तो, क्योंकि देखिए बैंकिंग के मसाइल माली मामलात में तो सब मानते हैं कि हजरत मुफ्ती तकी साहब बहुत एक्सपर्ट हैं। और ये मैं आपको बात अर्ज कर दूं, ये भी हजरत के साथ ज्यादती है, वो सिर्फ बैंकिंग के मसाइल में माहिर नहीं है, वो हर मसले में माहिर है। उनको महदूद कर देना कि इस्लामिक, क्योंकि हमने उनकी अरबी किताबें पढ़ी हैं, मैंने उनकी सही मुस्लिम की अरबी में शरह है उनकी तकमीलत फतहुल मुल्हिम, वो आप पढ़ोगे आपको अंदाजा होगा कि उनको हदीस का अल्लाह ने कितना इल्म दिया है। असमाउर रिजाल में बहुत एक्सपर्ट हैं वो, फिका में उनकी दरसे तिर्मिजी आप पढ़ो तो आप हैरान हो जाओगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो ये कह देना कि वो इस्लामिक बैंकिंग के मसाइल में, वो इस्लामिक बैंकिंग के मसाइल में तो उनका दुनिया से वास्ता पड़ा है, दुनिया ने लोहा मान लिया, बाकी मसाइल में वास्ता पड़ता तो भी दुनिया लोहा मानती, तो सिर्फ इसमें नहीं है एक्सपर्ट वो। बाकी जाहिर है जब किसी आलिम को एक्सपर्ट कहा जाता है तो ये मतलब नहीं होता कि उससे कभी कोई खता हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बैंकिंग के मसले में एक दफा जामे तो रशीद ने बताया हजरत को कि ये इस तरह है, तो उन्होंने उससे रुजू किया। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने एक दफा बताया कि करंसी के नोटों के तबादले में खास एक बैग थी खरीदो फरोख, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया उससे। वो तो उलमा करते रहते हैं, ये तो उनकी एक बड़ापन है कि वो कभी को उनसे खता हो तो वो रुजू भी कर लेते हैं, लेकिन तंज करना नहीं बनता। हमारे यहाँ कुछ लोग बैंकिंग के मसले में मुफ्ती तकी साहब पे तंज करते हैं, ये तंज नहीं बनता भाई, आपका नहीं मानना तो ना मानो। तो भंडोरी टाउन वाले भी हमारे उलमा में से हैं और भंडोरी टाउन ने जो काम किया है वो इतना काम किया है, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पावरफुल दारुल इफ्ता मसाइल का वो भंडोरी टाउन का है। जब भी आप गूगल पे कोई मसला लिखो सबसे पहले भंडोरी टाउन की वेबसाइट खुलती है, तो हमें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उसमें रेफरेंसेस भी हो जाते हैं, तो मुझे तो बहुत, जामे तो रशीद को बहुत फायदा हुआ है, हमें बहुत फायदा हुआ है। उलमा उस मसले की तकलीद तो नहीं करते, लेकिन जहां भंडोरी टाउन का मसला हो तो आगे रेफरेंसेज होते हैं दलाइल कहां कहां से लिया है, तो हमें वो फॉरन रेफरेंसेज तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें तो मैं लड़कों से कहता हूं यार भंडोरी टाउन ने वो काम किया कि हमारा काम क्या कर दिया, आसान नहीं बहुत ज्यादा आसान कर दिया। तो बहुत जानदार वेबसाइट है भंडोरी टाउन की गूगल पे जो है इनकी, और वो वीडियो के बगैर ही उन्होंने इतना खानदानी काम करके दिखाया है, सही है ना, डिजिटल कैमरे वगैरह के इस्तेमाल के बगैर। तो सब उलमा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तंज किसी पे नहीं बनता। आपको जिसकी राय पर एतमाद हो आप उसकी राय पर अमल कर सकते हैं। बाकी गुसल के फराइज रफी भाई ने क्या सिखा दो, वो मेरा क्लिप मौजूद है, गुसल वुजू वुजू सब कुछ सिखाया है उसमें। किसी पे गुसल फर्ज हो जाए तो फोन करे दोबारा बता दूंगा मैं भाई। तीन फर्ज है, मुंह भर के कुल्ली करना, नाक में पानी, पूरी जिस्म पे पानी बहा देना, यही है। चलो बस बेटा बहुत थक गया बस।